جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اسلامی نظریہ حیات کا مطالعہ کر رہے تھے، اسلامک آئیڈیالوجی آف لائف کیا ہے، یعنی وہ آئیڈیالوجی، وہ نظریہ، وہ نیریٹو، وہ بیانیہ جس کی روشنی میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ میگا تھیری کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ مہا نظریہ کیا ہے کہ جس کی روشنی میں اس پوری دنیا کو آپ یوں کہہ لیں کہ جی ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا الفا اینڈ اومیگا. الفا اینڈ اومیگا سے مراد کیا ہے؟ مبدا اور ماد، کہ اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی اور انتہا کیسے ہونے والی ہے. سب سے بڑی ریئلٹی یہ ہے کہ ہم اس پلینٹ ارتھ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس گولے کے اوپر ہم ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، سوائے چند ایک لوگوں کے جن کو کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم ہیں ہی نہیں، تو ان سے تو آپ بحث نہیں کر سکتے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، کوئی وجود ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہم ہے، خیال ہے، عکس ہے، ظلال ہے، ٹھیک ہے، سایہ ہے، بس کچھ ایگزسٹ نہیں کر رہا. جیسے سوفس تھے گریک فلسفی میں، یونانیوں کے ہاں، ان کا بھی اسی قسم کا ملتا جلتا نقطہ نظر تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس حوالے سے تین تھیریزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں، ایک ریلیجن میں ہے، مذہب میں، ایک سائنس میں ہے، ایولوشن کی تھیری جو مذہب میں ہے وہ کرسچینزم ہے، اور تیسری فلسفی میں، ٹھیک ہے، جو وحدت الوجود کے حوالے سے، یونٹی آف دی بینگ کے حوالے سے. تو ہم نے کہا تھا کہ جو مذہب کی تھیری ہے جو تمام سیمیٹک ریلیجن میں ہے، آسمانی ادیان میں، یہودیت میں بھی ہم نے دیکھ لیا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی ہے، وہ بھی تورات کو فالو کرنے والے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے یہ سارے سلسلے کا آغاز کیا، ان کو جو ہے وہ جنت میں رکھا. آسمانوں کی جنت ہے، یا بائبل کے اندر یہ ہے کہ جی زمین کی جنت تھی جس میں رکھا، اور ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں بھیج دیا اور ہماری آزمائش شروع ہو گئی. یہ درمیانی عرصہ کہ جس جنت سے ہم نکلے ہیں دوبارہ ہم اس جنت میں جائیں، آسمانوں کی جنت میں، تو اس کو اللہ نے آزمائش کا عرصہ بنایا، اور اس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کے دکھا دو، تو واپس تمہیں میں اسی جنت میں داخل کر دوں گا جس میں سے تمہارے اماں اور ابا کو شیطان کے وسوسے کی وجہ سے جو ہے وہ نکلنا پڑا، یا درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے نکلنا پڑا، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہماری بات یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ بات ثابت کی ہے، پروف کی ہے کہ کوئی خالق ہے، ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ جی کوئی خالق نہیں ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ ایک بیوقوفی سی معلوم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جواب ہی تین ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی خالق ہی خالق ہے، مخلوق ہے ہی نہیں، وحدت الوجود والے. چلیں انہوں نے تو مخلوق کا انکار کیا نا، بہرحال وہ بھی ایک گمراہی تھی، لیکن انہوں نے خالق کا انکار نہیں کیا. دوسرے جواب میں، صرف ایک جواب میں، ایولوشن والے جواب میں خالق کا انکار ہے، ٹھیک ہے. مذہب والے جواب میں بھی خالق موجود ہے، وحدت الوجود والے جواب میں بھی خالق موجود ہے. اس کوشچن کے تین ہی جواب آئے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے. ایک جو جواب تھا، آنسر تھا، اس میں خالق نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ وہ جو ایولوشن کا جواب ہے، اس میں یہ بات کہنا کہ اس میں خالق نہیں ہے، اس میں سب کا کنسنسس ہے، تو ایسا نہیں ہے. سائنسٹسٹ جو ہیں ان کے اندر آگے پھر کیٹیگریز ہیں. کچھ سائنسدان ایسے ہیں جو ایولوشن کو بھی مانتے ہیں، خالق کو بھی مانتے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو ہے نا، ان کا جو ایولوشن کا نقطہ نظر ہے وہ تھیسٹک ایولوشن آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ارتقاء ہوا ہے اسی طرح سے، لیکن یہ امر ربی سے ہوا ہے، خدا کے حکم سے ہوا ہے. زندگی اسی طرح سے ایگزسٹ کر رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سروائیول آف دی فٹسٹ کی وجہ سے نہیں ہوا، نیچر کی سلیکشن نہیں تھی کہ ایک سپیشی سے دوسری سپیشی آ گئی، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اور مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں، کرسچینز میں بہت سارے ایسے ہیں جو ایولوشن کو مانتے ہیں لیکن خالق کو مانتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کا جواب سیم ہے ایولوشن والے نظریے میں جو ایولوشن کو مانتے ہیں, جنہوں نے وہ جواب دیا کہ انسان کیسے وجود میں آیا, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ایولوشن کا نتیجہ ہے, ایک سیل سے ارتقاء کرتے کرتے انسان بن گیا. اگرچہ اس تھیوری کے اوپر بہت سے سوالات ہیں, لیکن اس کے باوجود سارے یہ نہیں کہتے کہ وہ بغیر خالق کی ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کریٹر نے یہ سب کیا ہے, یہ ایولوشن بھی کریٹر کے حکم سے ہوا ہے, اس کے آرڈر سے ہوا ہے, یہ امر ربی ہے. تو ایک تو وہاں بھی سپلٹ ہو گیا. دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ بڑے بڑے جو سائنسٹسٹ ہیں, ہم نے ان کی کوٹیشنز دیکھی تھی نا, آئنسٹائن سے لے کے سٹیفن ہاکنگ تک, بڑے بڑے سائنسٹسٹ کی ہم نے کوٹیشنز دیکھی تھی, وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کریٹر کو مانتے ہیں, ہم خدا کو مانتے ہیں. تو گویا سائنس دان, بلکہ ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی سائنس کا تھوڑا سا نالج جو ہے وہ آپ کو خدا کے انکار کی طرف لے جائے گا, لیکن جب آپ اس کا پورا نالج حاصل کر لو گے تو پھر ہاں وہ جو جام آپ پی رہے ہو سائنس کا, اس کی باٹم میں, اس کے پیندے میں آپ کو خدا بیٹھا نظر آ جائے گا, یا جس لیب میں آپ داخل ہو رہے ہو اس کے دروازے پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ ایمان کے ساتھ زندہ رہو, ٹھیک ہے. تو یہ بڑے بڑے سائنسٹسٹ جو ہیں ان کے کوٹیشنز ہم نے دیکھی, آئنسٹائن سے لے کے سٹیفن ہاکنگ تک, نہیں بلکہ نیوٹن سے لے کے سٹیفن ہاکنگ تک. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سائنس آپ کو اس طرف نہیں لے کے جاتی کہ کوئی کریٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے. سائنس آپ کو بلکہ اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ کوئی کریٹر ہے. تو تیسرے جواب میں بھی کریٹر کا انکار نہیں ہے, لیکن تھوڑے سے لوگوں نے جو ہے وہ تیسرے جواب والوں نے, ایولوشن والے جواب والوں نے, تھوڑے سے لوگوں نے کیا کیا, کریٹر کا انکار کر دیا. اس سے یہ ایک غلط فہمی, ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی کہ شاید سائنس کیا کرتی ہے, آپ کو مذہب سے دور لے جاتی ہے, یا سائنس جیسے مذہب کو اپوز کرتی ہے, ریلیجن کو اپوز کرتی ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے, ہم نے کہا تھا کہ یہ جو کوشچن ہے کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں, تو اس میں سائنسٹسٹ جو چوٹی کے ٹاپ کے سائنسٹسٹ ہیں, بلکہ اس میں ایک صاحب نے کتاب لکھی, انہوں نے کوئی 50+ نوبل پرائز جو سائنسٹسٹ تھے ان کی انہوں نے کوٹیشن جمع کی, جو خدا پہ بلیو رکھتے تھے, ٹھیک ہے, وہ کرسچینز تھے, کوئی جیو تھا, ان کی اپنی اس میں جو ہے وہ اور بھی مختلف مذاہب کے تھے, لیکن بہرحال وہ کریٹر کو مانتے تھے. تو یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کریٹر ہے. آپ جس ڈسپلن سے آ جائیں, جس جواب سے آپ آ جائیں, کریٹر آپ کو ماننا پڑتا ہے, سوائے چند ایک لوگوں کے, محدود لوگوں کے, گنتی کے چند لوگوں کے جنہوں نے خالق کا انکار کیا, خدا کا انکار کیا, ٹھیک ہے. باقی کچھ لوگوں کے ہاں جو خدا کا انکار ملتا ہے, تو وہ بھی ان دا سینس, اس سینس میں جیسے گلیلیو نے کہا تھا کہ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا. آکسفورڈ میں جو اس نے لیکچر دیا تھا عیسائی پادریوں کو, تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا, تمہارا خدا جو ہے وہ مجھے بہت چھوٹا لگتا ہے, اور جب میں کائنات پہ غور کرتا ہوں تو کائنات بہت بڑی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ جو خدا کا انکار کر, مطلب ایک ہے نا مین میڈ گاڈ, ایک خدا وہ ہے جو انسانوں نے بنایا, سیدھی سی بات ہے, ہمارے کانسیپٹس ہیں, ہمارے ذہن میں خدا آ گیا, ہم نے کہا یہ خدا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو ممتاز مفتی نے ایک جگہ لکھا ہے نا کہ بچپن میں ہم مولوی صاحب سے جب سنتے تھے خطبہ جمعہ میں خدا کے بارے میں, تو ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے خدا کو بھٹیارن ہے, بھٹیارن سمجھتے ہو, بھٹی جس نے تباہی ہوئی ہے, اب جو آئے گا اور اس کو اٹھا کے اس کے اندر پھینک دے گا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک پادری سے, ایک پریسٹ سے, ایک جو ہے وہ کسی پنڈت سے, یا ایک کسی ان پڑھ دیہات کے گاؤں کے کسی مولوی سے خدا کا کوئی کانسیپٹ آپ نے سن لیا, تو ضروری نہیں ہے کہ خدا وہی ہو, وہ اس کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ایک جاننے والے بتا رہے تھے کہ ایک جگہ انہیں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا کسی بیکورڈ ایریا میں, تو وہ مولوی صاحب لگے ہوئے شفاعت پہ تقریر کر رہے ہیں, قیامت والے دن رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, اس پہ تقریر کر رہے ہیں. تو وہ جیسے پیور سرائکی میں قیامت دا دھاڑ ہو سی, مطلب قیامت والا دن ہوگا, ہیں ٹھیک ہے. اور المیہ جو ہے وہ اس نے تو سرائکی میں بات کی, خیر المیہ حکا پی رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, پورا اس نے سین کھینچا, ٹھیک ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کے آ جائیں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اللہ میاں اٹھیں گے, اور اللہ کے رسول آگے بڑھ کے جو ہے نا جفا ماریں گے اللہ میاں کو, جفا مار کے جو ہے وہ پیچھے سے امت کو کہیں گے لگی جاؤ لگی جاؤ لگی جاؤ, ٹھیک. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے خدا کا, ठीक है, जो मौलवी साहब मिंबर पे खड़े होके बयान कर रहे हैं, ठीक है। अब जहरी बात है कि ये कोई खुदा का वो तस्वुर तो नहीं है ना जो हमें कुरान में मिलता है, जो हमें सुन्नत में मिलता है, या ये शफात का वो कॉन्सेप्ट। तो मौलवी साहब जो बयान कर रहे हैं, नो डाउट, जरूरी नहीं कि वही खुदा हो, ठीक है। तो इसलिए मौलवी साहब जो बयान कर रहे हैं उस खुदा के कॉन्सेप्ट में और जो किताब सुन्नत का है उसमें फ़र्क हो सकता है। तो अगर किसी ने इनकार कर दिया खुदा का, इन द सेंस कि भाई ये जो तुम बयान कर रहे हो ना, ये कोई खुदा वुदा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, उसकी गुंजाइश निकलती है कि भाई मैं तुम्हारे खुदा को नहीं मानता। ये तो अल्लाह के रसूल से सलम ने भी कहा ना कि मैं तुम्हारे खुदाओं को नहीं मानता, तुम्हारे माबूदाने बातिला को। तो खुदा का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। तो खैर बहरहाल ये हमने बात की। अब मसला ये है कि सब ने मान लिया कि जी क्रिएटर है, खालिक है, ठीक है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, ठीक है। जैसे कुरान ने भी कहा ना कि भाई देखें, सूरतें दो ही हैं, अगर तुम लॉजिकली रैशनल बेस पे अगर तुम सोचो, दो सूरतें, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरी अम खोलिकू मिन गैर शयीन अम हुमुल खालिकून, ये बहुत अहम आयत है कुरान मजीद की, सूरत तूर की, कमाल खजाना है। क्या वो अदम से वजूद में आ गए, क्या वो नथिंगनेस से बीइंग में मतलब आ गए, या वो खुद अपने खालिक हैं, अपने क्रिएटर खुद हैं। यानी एक तो यह ना कि इंसान कहे मैंने अपने आप को खुद पैदा किया, ठीक है, एक एक सूरत तो ये हो सकती है। ये तो कोई भी इंसान नहीं क्लेम कर रहा, 8 अरब इंसानों में कोई इंसान कह रहा है कि मैंने अपने आप को खुद पैदा किया, या कोई इंसान कह रहा है कि ये सारे बाकी 7 अरब मैंने पैदा किए हैं। अगर कोई कहे भाई कहेगा भी तो लोग क्या करेंगे उसको, मतलब चुपेड़े मार के उसका दिमाग ही सीधा करेंगे ना कि क्या बात कर रहे हो। इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं अपना खालिक हूं। अच्छा, इंसान अपना खालिक नहीं है तो मुराद ये है कि मखलूक है, फिर ये खुद खालिक नहीं है तो ये मखलूक है। अब इसका कोई खालिक है, ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि इसका कोई खालिक है। अब जवाब एक ही रह गया कि इसका कोई खालिक है। दूसरा जवाब ये रह गया कि कोई खालिक नहीं है, अपना खालिक तो खुद नहीं है, ठीक है, इसका कोई खालिक है या इसका कोई खालिक नहीं है। तो ये मानना इंसानी जहन के लिए, हम बात ये कह रहे हैं इंसानी जहन के लिए, जब तक आपकी अकल सलीम है, इंसान हठधर्मी पे आ जाए तो फिर तो जो मर्जी कर दो ना, सूरज निकला होगा कितने निकला, क्या कर सकते हैं आप, हैं कौवा काला हो तो वो कहीं सफ़ेद है, मुझे तो सफ़ेद नज़र आ रहा है, आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं ना कर सकते, ठीक है, कोई इस उसके ऊपर उतर आए। लेकिन अगर उसकी अकल सलीम हो और वो जिद और हठधर्मी पे ना हो और उसे कहो भाई दो ऑप्शन है, एक ये है कि इंसान को किसी ने नहीं पैदा किया, इस कायनात को किसी ने नहीं पैदा किया, दूसरा ये है कि इसको किसी ने पैदा किया है, मुझे बताओ जहन किसको एक्सेप्ट करता है, किसका कोई खालिक है, इसको एक्सेप्ट करता है या ये कि ये खुद से बन गया, ठीक है। यानी इंसानी जहन ये नहीं एक्सेप्ट करता कि कोई खुर्दबीन, कोई माइक्रोस्कोप खुद से वजूद में आ जाए, और हमारी आंख उस माइक्रोस्कोप से लाखों गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंसानी जेन ये नहीं जो है वो तस्लीम करता कि कोई जेट इंजन F-16 F-17 जो है वो खुद से वजूद में आ जाए, खुद से बन जाए। खड़े खड़े बस है कबाड़िए की दुकान में F-16 निकल आया, लोहा जो है वो आपस में टकराया, ओ शू करके जहाज निकल आया, नहीं ना कबूल करता इंसानी जेन, ठीक है, भले बिलियन ईयर्स गुजर जाए, वही कहते हैं ना एवोल्यूशन में बिलियन ईयर, ओ भाई भले बिलियन ईयर्स आप गुजार दें, जेट इंजन खुद से वजूद में नहीं आ सकता, ठीक है। तो इंसानी जेन जो है वो कैसे कबूल कर सकता है कि इंसान उस जेट इंजन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो रोबोट हमने बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। अब चाइना की डॉल्स आ रही है ना, ठीक है, जितना मर्जी तरक्की कर जाएं हम, लेकिन बात यह कि वो हमने बनाया, इंसान के बनाने से बनाया ना, कोई रोबोट देख के हम नहीं कहते कि खुद ही बन गया, इंसान देख के कैसे हम कह सकते हैं कि ये खुद बन गया, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। इंसानी जहन इसको तस्लीम नहीं करता। जब हम दुनिया में नहीं तस्लीम करते उन चीजों के हवाले से जो इंसानों ने बनाई है, हम तस्लीम नहीं कर सकते, तो इतनी बड़ी कायनात के हवाले से हम कैसे तस्लीम कर सकते। तो हमने कहा था कि ये बस इसमें एक ही जवाब है कि कोई क्रिएटर है, अकल यही कहती है। बाकी वो जो इतराजात करते हैं जी उस क्रिएटर का भी कोई क्रिएटर हो सकता है, उस खालिक का भी फिर मानो को, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर दिया जवाब उसका क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे कि उस क्रिएटर ने, जहरी बात है अगर हम उसकी क्रिएशन है तो उसने हमसे राबता किया कि नहीं किया। देखें अब नासा वाले बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट हैं। नासा, पता है ना नासा क्या चीज है, कहां पर है, पत्तों की मियां या कसूर में? यूएसए में, हाँ पता होना चाहिए ना। नासा जो है वो एक स्पेस साइंस के हवाले से, स्पेस साइंस मतलब ये क्या कहेंगे उर्दू में, क्या तर्जमा करेंगे, खला के हवाले से तहकीक का एक इदारा है अमेरिका के अंदर, ठीक है। अब नासा जो है वो बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट हैं कि हम ये मालूम करें कि लाइफ जो है इस प्लेनेट अर्थ के अलावा भी, हमने कहा था बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं, अरबों खरबों हैं, किसी और सैयारे पे भी जिंदगी है कि नहीं है, ठीक है। एक उन्होंने मतलब एक बात उनको वो स्टीफन हॉकिंग सुझा गया, बहरहाल उसने कहा कि मेरा मैथमेटिकल माइंड कहता है, मतलब उसने एक तुक्का चलाया था, मेरा मैथमेटिकल माइंड ये कहता है, मतलब हिसाबी किताबी दिमाग कह लें, मैथमेटिकल माइंड का मतलब कि लाइफ कहीं और भी एग्जिस्ट करती है। हो सकता है उसका ये वजदान ठीक हो, लेकिन इसका मतलब ये ना हो कि एलियंस हैं, इसका मतलब फरिश्ते भी हो सकते हैं, ठीक है, वो भी तो लाइफ है ना, लेकिन बहरहाल वो उस तरफ नहीं जाएंगे। तो उसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट आया कि जी एलियंस हैं, दूसरे स्टार्स के ऊपर भी कोई लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो अब इन्होंने कहा जी वो हमसे रابطہ करें, वो हमसे रابطہ करने की कोशिश करेंगे। ये एक सोच है बकायदा साइंस में, बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट हो रहे हैं कि आप किसी तरह से वो आवाज कैप्चर कर लें उस खलाई मखलूक की, एलियंस की, जो हमसे रابطہ करने की कोशिश में है, सिग्नल भेजने की कोशिश में। तो अगर कोई और मखलूक मौजूद है, इंसानी दिमाग ये कह रहा है कि अगर है तो वो इस प्लेनेट अर्थ वालों से रابطہ करेगी, यहां प्लेनेट अर्थ में हम हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि कहीं और होने का हमें शुबा है। साइंस वाले कह रहे हैं किसी और प्लेनेट पे भी लाइफ होने का हमें शुबा है, ये भी लगी हुई है उससे रابطہ करने में, बात समझ रहे हैं? तो अगर किसी ने पैदा किया तो कैसे मुमकिन है वो हमसे रابطہ नहीं करेगा? हम सिर्फ इस बुनियाद पे, हम इतनी जहीन मखलूक है, इंसान इतना इंटेलिजेंट है, वो सिर्फ इस बुनियाद पे कि हम इस दुनिया में हैं, और कोई और एग्जिस्ट कर सकता है किसी प्लेनेट पे, ठीक है, लाइफ हो सकती है, हमें उससे रابطہ करना चाहिए। और ये भी ख्याल है कि वो हमसे रابطہ कर रहे होंगे, और उसके लिए वो सिग्नल, और बड़े बड़े तजुर्बात होते हैं। एक दफा जो है ना वो उन्हें सिग्नल मौसूल भी हो गया था, वो मैं किस कहां बीबीसी पे पढ़ रहा था बकायदा, एक आर्टिकल आया होता, सिग्नल मौसूल भी हो गया, बड़े खुश हुए। वो बाद में पता चला कि लैब के अंदर जो वो माइक्रोवेव रखा हुआ था ना ओवन, उसके अंदर रेस से जो है वो सिग्नल मौसूल हो रहे थे। खैर बहरहाल वो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। तो कहने का मकसद यह है कि इंसान इतना एक्साइटेड है, ठीक है, इन्होंने सिग्नल भेजी हुई है, पूरी कैलकुलेशन की हुई है, इतने सालों तक ये सिग्नल इतना ट्रेवल कर लेगा यूनिवर्स के अंदर। कार्ल सगान की आवाज भेजी हुई है, कार्ल सगान की, इसमें जाके अभी आप जाके देखें, एक इंसान हो के हम एक और मखलूक के बारे में हमें सिर्फ डाउट है, वो एक शक है, एक शुबा है कि कोई हो सकती है यूनिवर्स में, हम उसको सिग्नल भेज रहे हैं, और ये अकीदा भी रखा हुआ है साइंटिस्ट ने कि वो हमें सिग्नल भेजेंगे, तो अगर कोई क्रिएटर है कैसे मुमकिन है कि वो हमें सिग्नल ना भेजे? जिसने हमें पैदा किया कैसे मुमकिन है, पॉसिबल है वो हमें सिग्नल नहीं भेजेगा? ठीक है, बहुत लॉजिकल बात है कि वो सिग्नल भेजेगा, और उसने सिग्नल भेजे हैं, उसने सिग्नल भेजे हैं। वो सिग्नल कैसे भेजे हैं? रसूलों के जरिए से, भाई यही तो सिग्नल है। वो फरिश्ता क्या है? मतलब बात ये है कि आप उसको एलियन कह के मान लें, वाह 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 वाह, ठीक है, मतलब आपने बड़ी साइंसी बात मान ली है, ठीक है, आप उसको फरिश्ता कह दें, आप तो वो हो गए यार, दकियानूसी हो गए हैं, फरिश्तों को मानते हैं। मतलब एलियन में फरिश्ते में क्या फर्क है? एलियन का जो आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो भी स्पेस से आ रहा है, फरिश्ता भी स्पेस से आ रहा है, ठीक है, वो भी उड़ता हुआ आ रहा है, खोते घोड़े पे थोड़ा आ रहा है, उड़ता ही आएगा ना, जो कुछ आपने उसका कॉन्सेप्ट मूवीज में बच्चों को कार्टून्स में दिखा दिया है, कैसे आएगा? ऊंट पे चल के आएगा, ठीक है, कोई स्पेसशिप से आएगा ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहरहाल जिस तरफ जा रहे हैं, ये साइंस फिक्शन हो गया, ये सब कुछ वो ही दिखा रहे हैं जिसके ऊपर ये इतराज करते हैं कि जी मदब वाले ये मान रहे हैं, सब कुछ साइंस के नाम पे वही दिखाया जा रहा है। फिलॉसफी ऑफ साइंस में सारी बातें आपको वही मिलेंगी, जिनकी हैरी पॉटर उठा के देख लें, सारा कुछ उठा के देख लें, सब क्या हैरी पॉटर क्यों कामयाब हुई, सिर्फ इसी पे इंसान सोच ले मतलब हैरी पॉटर क्या है, हैरी पॉटर कभी आप इस पे आर्टिकल, वैसे मैंने भी नहीं देखी हुई, ये मत समझे, बहुत से लोग अंदाजा लगाना शुरू, हाफिज साहब ने पता नहीं देखी है क्या, खैर बहरहाल मुझे कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ से ज़रूर दिलचस्पी होती है, कोई नई चीज़ आए तो मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। हमें रिटर्न में बहुत सी जो है वो रिसर्चेज मिल जाती हैं, ज़रूर है हमने किसी के बारे में देखना है। फिर यह है कि अच्छी चीज़ों के ऊपर आपको YouTube के ऊपर रिव्यूज़ मिल जाते हैं, बहुत से लोगों ने अच्छी मूवीज़ को रिव्यू दिया होता है, तो आप वो मूवी ना भी देखें तो आप उसके बारे में जान सकते हैं कि असल में क्या कॉन्सेप्ट था, क्या आइडिया था, इसने क्या डिबेट पैदा किया, क्या डिस्कशन हुई है। वो शायद मूवी 10 दफ़ा देखने के बावजूद आप में वो चीज़ पैदा ना हो कि यार पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। एक साहब जो कि एथियस्ट थे, वो मुझे कहने लगे एक दफ़ा, हाफिज साहब आपने वाली देखी है? मैंने कहा हाँ मैंने देखी है। वाल ई जो है ये कार्टून है, वाली क्या है, कार्टून है, एक रोबोट की कहानी है। मैं असल में मेरे बेटे को कार्टून का शौक था तो मैं उसके लिए उठा के ले आया मार्केट से, ठीक है, वो रोबोट की कहानी थी, वो मैंने भी देखी, बच्चे ने भी देख ली, तो वो मुझे इथी समझते हैं ना, मतलब जो खुदा को नहीं मानते। मुझे कहने लगा क्या समझ में आई बात वाली से, मैंने कहा बस कार्टून है और क्या। फिर उसने मुझे बताया कि ये कार्टून नहीं है, ये सारी हमारी फिलॉसफी है जो हम कार्टून के जरिए आपको बता रहे हैं। आप लोग तो भोले भाले हैं, सादे से हैं, आप उसको एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं, हम आपको अकीदा पढ़ा रहे हैं, आप समझे। फिर मैंने उस पर रिसर्च की, मोर देन 50 मूवीज हॉलीवुड के अंदर, टॉप क्लास की मोर देन 50 मूवीज जो हैं जो हॉलीवुड से, हॉलीवुड तो जानते हैं ना, चलें शुक्र है। वो आपको सुनाया था उनका मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का लतीफ़ा है, नहीं सुनाया? मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी देवबंद के एक बहुत बड़े आलमी दीन थे, ये फलसफा वलसफा पढ़ा इन्होंने, मुलहिद हो गए, एथियस्ट हो गए, बाद में फिर वापस आए दीन की तरफ। तो एक मरतबा सैन में से निकल रहे थे, उस वक़्त जबकि मौलवी हो गए थे, ठीक है, अच्छे भले, ये मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा के खलीफा भी थे, यानी बैत वैत और ये सारा कुछ। बाद में सैन में से निकल रहे थे तो इत्तेफाक से एक मुरीद भी सैन में से निकल रहा था, उसने जब देखा कहने हजरत आप, तो उसको कहते हैं भाई बात यह है कि बुराई का पता नहीं होगा तो बुराई के खिलाफ जिहाद क्या खाक करेंगे। तो कहने का मकसद यह है, ये बात एक हद तक ठीक है, आपको पता ही ना हो कि शर क्या है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि शर पता कराने के लिए अब आप जाके मूवीज देखना शुरू कर दें, ठीक है, मूवीज देखने से आपको शर का नहीं पता चलेगा। हाँ, उन मूवीज के बारे में जो रिव्यूज हैं, भले वीडियो में 10-15 मिनट का, कोई कुछ चैनल ऐसे हैं अच्छा रिव्यूज देते हैं, वो पूरी फिलॉसफी पीछे बताते हैं, उस मूवी के पीछे क्या फिलॉसफी थी, ठीक है, क्या डिस्कशन उसने जनरेट की है, ये मूवी क्यों लॉन्च की गई, इसके क्या इफेक्ट्स हैं सोसाइटी के ऊपर, लोगों का जेहन किस तरह से चेंज किया गया। हाँ, ये जरूर देख लेना चाहिए। फिर उसके बारे में आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है, तो उन आर्टिकल्स को आप स्टडी करें। तो ये सब कुछ है मीडिया का जो असर है, हम तो समझ रहे हैं वो कार्टून है बस और कुछ भी नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो 50 मोर देन 50 मूवीज हॉलीवुड की मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो एथिज्म को प्रोमोट करती हैं, लेकिन लोग जस्ट उसको एंटरटेनमेंट समझते हैं, वो पूरी सोच है। वहां जो मूवीज बनाने वाले होते हैं वो PhD होते हैं पीछे साइकोलॉजी में, उन्हें पता होता है कि हमने बंदे को कहां रुलाना है, कहां हमने हंसाना है, और जहां वो आपको रुलाना चाहते हैं आप रोते हैं, ये देखते हुए कि यार ये ड्रामा है, ठीक है, आपको पता है ये फेक है, झूठी कहानी है, पता है ना, फिर भी रोते हैं उसको देख के, क्यों, कमाल है उनका, ठीक है, यहाँ हकीकत में रोना नहीं आता, वहां आप झूठ देख के रोना शुरू कर देते हैं, और उनको पता है कि जहां हमने आपको रुलाना है अब आप रिलैक्स हो गए, आपके यहाँ जो फिल्टर लगे हुए थे ना ये हो गए, ये खुल गए, सबने हमने फिल्टर लगाए हुए हैं, अंदर ये जाने देना ये नहीं जाने देना, ठीक है, सबने फिल्टर लगाए हुए हैं ना, ये बंदा कौन है, अच्छा ये मेरे मसलक का नहीं है, बंद दरवाजा, बंद बोली जाओ। वो पिछले दिन एक मौलवी साहब देखे आपने, वो सोशल मीडिया पे, मैं नाम नहीं लेता यार, नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़े एक जमात के तहरीक के सरबरा, अगर ये बात कहोगे हमारे कान बंद, नहीं सुननी, कान बंद, अगर तुमने ये बात कही मैंने कान बंद कर लिए, मैंने नहीं सुननी, ठीक है, ये एक तहरीक के सरबरा कह रहे हैं, तो उसके फॉलोअर्स का क्या हाल होगा, ठीक है, सब ने फिल्टर्स लगाए हैं, वहां वो बोर तेज हैं, उनको पता है कैसे फिल्टर खोलने हैं, पता ही नहीं चलता, फिल्टर खोल के आपके अंदर सब कुछ इंजेक्ट कर देते हैं, पानी है ना, फिल्टर होके आ रहा है ना, फिल्टर हटाएंगे, फिल्टर का फायदा भी है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं फायदा, नुकसान भी है उसका, कि बाद अवकात इंसान हक से जो है वो फिल्टर लगा लेता है, हक को नहीं आने देता दिमाग में, ठीक है, और बाद अवकात यह है कि गन से बचने के लिए फिल्टर लगा लेता है, वो ठीक है। खैर भारत, हम ये कह रहे हैं कि अब एक क्रिएटर है, ठीक है, एक खालिक है, उसने सिग्नल भेजे हैं और उसने कहा है, जब दुनिया में उसने भेजा था अल्लाह ताला ने, वो जो रुकू है बहुत अहम है, वेज काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, उसमें आखिर में क्या है कि मैं तुम्हें दुनिया में भेज रहा हूं, फैम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फल, देखिए इस सिर्फ आप कुरान मजीद को ट्रांसलेट कर दें साइंस की जुबान में, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां तर्जमा करें रिटन में, नहीं ऐसे ना करें, क्योंकि आजकल की जुबान ना लोगों को कहेंगे हिदायत आएगी, आप उसे कहें भाई सिग्नल आएगा, यहां क्लिक करेगा उसके दिमाग में, यहां क्लिक करेगा ठक करके गोली की तरह, अल्लाह ने कहा है कि मैं सिग्नल भेजूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी जुबान सारी सिग्नल पे चल रही है, सिग्नल आना है, वो बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं कि सिग्नल आना है, और भाई तुम सिग्नल के इंतजार में बैठे हो, सिग्नल आ चुका है, स्पेस से सिग्नल आ चुका है, 1400 साल पहले आ चुका है, पूरा मैसेज आ चुका है सिग्नल के जरिए से, जिस तरह से तुम सिग्नल रिसीव करना चाह रहे हो उस तरह से सिग्नल रिसीव नहीं होगा, तुम्हारा सिग्नल रिसीव करने का तरीका गलत है, ठीक है, सिग्नल रिसीव होगा, नो डाउट होगा, ठीक, एक साहब हैं इंडियन पोइट हैं जावेद अख्तर, खैर ये हजरत अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है, एक बंदा जहीन हो जिसमें जो सलाहियत है, कोई नहीं आप उसकी तारीफ कर दें, है एथिस्ट बंदा, एथिस्ट है, मुलेद हो गया, कम्युनिज्म से मुतासिर हो गया, कहता बात यह है, इसकी डिबेट हो रही थी किससे, सदगुरु से, सदगुरु जानते हैं, अच्छा आप नहीं जानते हैं, नहीं नहीं नहीं, सदगुरु हिंदू है यार, वैसे उसको ना ऐसे ना सुनना, पहले अपना जो है ना थोड़ा सा ईमान पक्का करके, कमाल जहीन आदमी है लेकिन है, प्रो हिंदू है, प्रो हिंदू समझते हैं ना, इंटेलेक्चुअल है, इसकी डिबेट हो रही थी, वो असल में हिंदुइज्म का दिफा कर रहा था सदगुरु, ठीक है, एक हिंदू जो है वो रिलीजन का दिफा कर रहा है और एक मुसलमान जो है वो रिलीजन का इनकार कर रहा है, ये सूरत हाल पहुंची हुई है, ठीक है, और उस डिबेट में वो हिंदू गालिब आ जाता है, हैं दोनों इंटेलेक्चुअल, उसके यूट्यूब पे देखें सदगुरु VS जो है वो जावेद अख्तर, नीचे उसके सब टाइटल लगा लिया करें, अगर अंग्रेजी इतनी समझ नहीं आती ना तो उसमें एक होता है कि सब टाइटल आ जाते हैं लिखी हुई, अच्छा उसमें जावेद अख्तर ने एक बात कही सदगुरु को, उसने कहा देखो बात यह है कि बिलीफ में और फेथ में फर्क होता है, तुम कहते हो ना बिलीफ ये है कि नॉर्थ पोल है, मैं मानता हूं मैंने नहीं देखा, वो बात ये आ गई ना कि हर चीज जरूरी नहीं कि आप मानते हो तो आपने देखी भी हो, नॉर्थ पोल है, अमेरिका है, आपने नहीं देखा लेकिन मानते हैं ना, सिकंदर आजम आपने नहीं देखा लेकिन मानते हैं, कायदे आजम आपने नहीं देखा लेकिन मानते हैं, तो उसका जवाब उसने क्या दिया जावेद अख्तर ने जो एथियस्ट था, उसने कहा भाई बिलीफ में और फेथ में फर्क होता है, ठीक है, उसने फर्क ये किया कि मैं बिलीफ रखता हूं, उसने कहा हम लोग बिलीफ रखते हैं लेकिन हम फेथ नहीं रखते, ठीक है, बिलीफ क्या है, बिलीफ ये है कि नॉर्थ पोल है, ठीक है हम मानते हैं, अमेरिका है मैंने नहीं देखा हम मानते हैं, ठीक है, फलां चीज है हमने नहीं देखी, बहुत सारी चीजें हैं हम नहीं देख पा सकते, ठीक है, एटम है हम नहीं देख सकते लेकिन हम मानते हैं, उसने कहा भाई बिलीफ वो होता है जो रीजन बेस्ड होता है, जिसके पीछे रैशनेल होती है, यानी आप उसकी कोई लॉजिक दे सकते हैं वो बिलीफ होता है, भले आपने 5 सेंसेस से उसको ना लिया हो। फेथ वो होता है जिसके पीछे रीजन नहीं होती। तो कहने लगा ये सारी चीजें जो हम साइंस में मानते हैं ना, ये असल में बिलीफ है, इनके पीछे रीजन है। भले हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन ना दिखा सके, हम कहते हैं पीछे रीजन है, ठीक है। वो रीजन जब हम देते हैं ना तो वो चीज जस्टिफाई हो जाती है, इसलिए हम उसको मानते हैं। बात समझ रहे हैं? जो आप फेथ बता रहे होते हैं ना, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। जन्नत जहन्नम है, ठीक है, अजाबे कब्र है, फरिश्ते हैं, कोई रीजन नहीं है। एलियंस हैं, उसके पीछे रीजन है। खैर बहरहाल, असल बात यह है कि यहां उसने नहीं जवाब दिया, सदगुरु ने उसको, लेकिन बात यह है कि उसको जवाब दिया जा सकता है इस तरह से। देखें बात यह है, वो ये जो कह रहा है ना, ये जो फर्क कर रहा है कि जो तुम मान रहे हो वो फेथ है, उसके पीछे रीजन नहीं है, लॉजिक नहीं है, विटनेस नहीं है। उसने बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए, कोई गवाही नहीं है। उसने कहा देखो बात यह है कि नॉर्थ पोल को मैं इसलिए मानता हूं कि एक बंदा नॉर्थ पोल देख के आया, वो मुझे बताता है नॉर्थ पोल है, तो मैं मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि गवाही आ गई, उसने देखा है। एक बंदा अमरीका देख के आया है, मैं उसको मान रहा हूं, ठीक है, इसलिए कि गवाही आ गई। देखें बात यह है कि हमारे जो ईमानियात हैं इनके पीछे भी रीजन मौजूद है, लॉजिक मौजूद है, विटनेस मौजूद है। रसूल सलम देख के नहीं आए मेराज, मतलब जो हमें बता रहे हैं उन्होंने खुद मुशाहिदा किया है। आप कहते हैं एक बंदा नॉर्थ पोल जो है वो देख के आता है, वो मुझे बताता है नॉर्थ पोल है, तो मैं उसकी बात मानता हूं। क्यों? क्योंकि दरमियान में एक रीजन है कि एक बंदा आपको खबर दे रहा है, और दुनिया में हमारा सारा निजाम इसी बुनियाद पे चलता है। एक बंदा मुझे आके कहता है ओ जी वहां चौक पे कत्ल हो गया, तो मैं मान लेता हूं उसकी बात, ठीक है, क्योंकि सारा निजाम ही ऐसे चल रहा है, सारी खबर इसी तरह से चलती है, इल्म खबर के जरिए से मिलता है हमें, क्यों दरमियान में ये। तो हम भी तो यही कह रहे हैं भाई, वो जो नबी है उस नबी ने मुशाहिदा किया है ना, और वो एक नहीं है, वो बहुत से हैं। किसी एक ने ये क्लेम नहीं किया कि हमें सिग्नल आया है, एक ने क्लेम नहीं किया कि हमें सिग्नल आया है, कितनों के सिग्नल आए हैं, ठीक। तो वो सिग्नल रिसीव हुए हैं, एक बंदे ने रिसीव नहीं किए, बहुतों ने किए, और जिन्होंने भी रिसीव किए हैं उन्होंने मैसेज एक दिया। अजीब बात यह, या तो उनके मैसेज में होता फर्क, जिन्होंने सिग्नल रिसीव किया सबका मैसेज सेम है, आदम से लेके मोहम्मद रसूल सल्लम तक। किताबें मौजूद हैं ना आपके पास, स्क्रिप्चर्स हैं ना, तौरात है, इंजील है, सबको उठा के देख लें। आज हम देखेंगे तौरात खोल के, तौरात में वही मजामीन है जो कुरान के हैं। तौरात में तौहीद का बयान है, कत्ल ना करो, जिना ना करो, चोरी ना करो, सब टेन कमांडमेंट्स, अकाम अशरा जो बहुत मारूफ है उनके यहाँ, बाकायदा इस पर मूवीज बनी है। जो तौरात का खुलासा है वही कुरान का खुलासा है। बात यह कि सिग्नल आया है, एक मरतबा नहीं आया, सैकड़ों मरतबा आया है, और उस सिग्नल से जो मैसेज रिसीव हुआ है, अब इन्हें कहीं मैसेज रिसीव हुआ है, इन्हें कहेंगे किताब आई है तो वो उनको लगेगा इलॉजिकल बात है, ठीक है। तो मॉडर्न जो जहन है, ये बात जहन में रखें, जो मॉडर्न जहन है उसकी एक लैंग्वेज है, वो है साइंस की जुबान, वो उसको समझता है। अगर आप अपने अकीदे को, अपने नैरेटिव को, ये खैर मैंने यहाँ पे तो उस तरह से नहीं बयान किया, मैंने तो अब आप लोग जो हैं चूंकि सारे मजहबी बैकग्राउंड से हैं तो हमने तो उसको उसी तरह से बयान किया ना, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि मॉडर्न जेन को जब आप ये चीज़ पढ़ाएंगे तो आप साइंस की जुबान में जब पढ़ाएंगे उसको फौरन जाके क्लिक करेगी, फिर उसे ये बिलीफ नहीं लगेगा, उसे ये फेथ लगेगा, क्योंकि सारा चक्कर वहाँ पर यही चल रहा है। उनका जो फेथ का कॉन्सेप्ट है ना, वो सारा उसको यहां नजर आ जाएगा कि वो फेथ जिन बिसाखियों पे खड़ा है उससे ज्यादा विटनेसेस, उससे ज्यादा लॉजिक और रीजन यहां रिलीजन के इसके अंदर मौजूद है, क्लेम्स में। तो हम ये बात कर रहे थे कि क्रिएटर है, खालिक है, खालिक ने सिग्नल भेजे हैं, मैसेजेस भेजे हैं, या आसान अल्फाज में हम ये कह रहे हैं कि खालिक ने यह कहा था कि भाई दुनिया में जाओगे तो मैं अपनी किताबें भेजूंगा, फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून। तो जिसने उस मैसेज को रिसीव करके, वो जो मैंने सिग्नल भेजे हैं स्पेस से, ठीक है, हम कहेंगे आसमानों से, उसको स्पेस कह दें, ठीक है। तो वैसे ये काम मज़े का है कि ये बयानियाँ जो है वो साइंस की ज़ुबान में ट्रांसलेट कर दिया जाए, जदीद मॉडर्न ज़ुबान में। तो अल्लाह ताला ने कहा जिसने उसकी पैरवी की, उस मैसेज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी तो वो कामयाब है, और जिसने नहीं गुजारी तो वो नाकाम है, ठीक है। तो ये है, अब वो मैसेज आ गया है, मैसेज मुख्तलिफ लोगों को रिसीव हुआ, वो सिग्नल सबसे आखिर में किसको रिसीव हुआ? मोहम्मद रसूल सल्लम को। अब जिस बंदे को रिसीव हुआ سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 1400 سال کا. تو ہم نے مان لیا کریٹر ہے, ہم نے یہ بھی مان لیا کہ لاجک یہ کہتی ہے, ریزن یہ کہتی ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ وہ سگنل بھیجے گا, اس نے سگنل بھی بھیجا ہے اور یہ بات بھی پروو ہو گئی ہے, مختلف ادوار میں وہ سگنل آتا رہا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے, اس کو کچھ لوگ یہاں پہ ریسیو کرتے رہے ہیں. اب وہ سگنل جو آخری مرتبہ آیا ہے اپنی کمپلیٹ فارم میں, تو وہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کیا ہیں, 1400 سال کا فرق ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اب وہ سگنل نہیں آئے گا, آخری مرتبہ آ گیا, اب سگنل نہیں آئے گا, اب رابطہ نہیں ہوگا, اب یہاں کوئی ریسیور نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, خاتم النبیین کا یہی مطلب ہے. اب لگے رہو $1 بلین خرچ کر لو, کوئی سگنل نہیں ملے گا تمہیں. سگنل آ گیا ہے, اپنی کمپلیٹ فارم میں آ گیا ہے, وہ میسج تمہیں دے دیا گیا ہے. اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ بس تم یہ چاہتی ہو کہ وہ تمہارے اوپر آئے. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب اب دیکھیں نا, میں یہ کہوں کہ ناسا کو جو ہے وہ سگنل ریسیو ہوا ہے, میں اس وقت تک ناسا کا سگنل نہیں مانوں گا جب تک کہ میرے پاس نہ آ جائے. مجھے بتائیں, سائنس کی کوئی بھی بات آپ مان سکتے ہیں؟ مطلب اس وقت جتنی سائنس آپ کی کھڑی ہے وہ سب کیا میرے اوپر نازل ہوئی ہے, میرے اوپر اتری ہے, یا میں نے لیب میں اس کا تجربہ کیا ہے؟ جو یہ ساری دنیا پڑھ رہی ہے سائنس کتابوں میں, یہ سب کا انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے. میں نے ایٹم کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے, میں نے نیوٹران, چلو انہوں نے کر لیا نا, کتنے لوگوں نے کیا ہوگا. تو میں ان کی بات پہ کیا کر رہا ہوں؟ بلیو کر رہا ہوں. ناسا جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ناسا کے چاند ایک سائنسدانوں نے اس کا مشاہدہ کیا, آبزرویشن کی, کیلکولیشن کی, سارا کچھ کیا. بہت مشکل ہے بھائی. اسٹیفن ہاکنگ نے, جس نے اس نے بلیک ہولز کی تھیوری دی, اسٹیفن ہاکنگ نے, اس کے تھیسس کے بارے میں معروف ہے, بلکہ میں نے کہیں پہ پتہ نہیں کہاں پڑھا, شاید اس بات میں کچھ مبالغہ ہو لیکن کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے, کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو تھیسز ہے نا, اس کو دنیا میں سمجھنے والا میں ہی ہوں. بلکہ کانٹ کے بارے میں بڑا معروف ہے, کانٹ بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے ویسٹ میں. وہ یہ کہتا تھا بھائی دنیا میں مجھے دو لوگ سمجھتے ہیں, دنیا میں دو لوگوں نے مجھے صرف سمجھا ہے, ان میں سے ایک میں خود ہوں اور دوسرا میرا شاگرد ہے, اور میں تم کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ شاگرد نے جو مجھے سمجھا ہے وہ بھی غلط سمجھا ہے. تو اس کا جو تھیسس ہے اسٹیفن ہاکنگ کا, کہتے ہیں کہ دنیا میں شاید کوئی 2-4 لوگ ہوں گے جو اس کو سمجھ سکیں اس سائنس کی زبان میں. اتنا آسان تو نہیں ہے. اب آپ ایک ریڈی والے کو سمجھا سکتے ہیں بایولوجی, ایولوشن, ٹھیک ہے, اٹامک ماڈل, ٹھیک ہے, اس کا نیوکلیس, اس کے پروٹان نیوٹران, وہ بچوں کو نہیں سمجھ میں آتا جن کو سائنس پڑھا پڑھا کے تھک جاتے ہیں, ان کے سر سے گزر جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ کیا ہے, سارا بلیف سسٹم چل رہا ہے نا, سارا کیا چل رہا ہے, بلیف سسٹم. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, میڈیکل سائنس جتنی ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, 2-4 لوگ پڑھے لکھے سوال کر لیں گے, ڈاکٹر صاحب کیا ریزن ہے, کیوں یہ دوائی دے رہے ہیں, کیوں سارا کیا ہے, بلیف سسٹم ہے, جو ٹیکا ٹھوک دو, ٹھیک ہے, ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے. ساری آپ کی دنیا جو سائنس کیا ہے, سائنس بھائی, نہ سارے لوگوں کو وہ سائنس آتی ہے نہ آ سکتی ہے, ان کا ذہنی سطح ہے کہ آپ ان کو وہ سمجھا سکیں. پھر ایک لیول ہے ابتدائی لیول کی, ہم جیسوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی, جب آپ ہائر لیول پہ جائیں گے دماغ گھوم جائے گا. اب میتھس کی کوئی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی, بھلے آپ نے میتھس پڑھا ہو, گریجویشن کر لیو, بی ایس کر لیا ہو آپ, اس سے آگے بھی میتھ کا لیول ہے نا. آپ کتاب اٹھا کے نکال کے دیکھیں گے نہیں سمجھ میں آئے گی, یہاں تک آپ پی ایچ ڈی کر لیں, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی بہت کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. میں ابھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نے جب یہ کتاب لکھی وجود باری تعالیٰ, مذہب فلسفہ اور سائنس کی روشنی, ایگزسٹنس آف گاڈ ان دی لائٹ آف فلاسفی سائنس اینڈ ریلیجن, تو اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب ہے یہ, دی گرینڈ ڈیزائن, 2012 میں آئی ہے, یہ لیٹسٹ کتاب ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ معراج ہے جو آج تک انسان نے سوچا ہے. خیر میں نے اس کا مطالعہ شروع کر لیا, ایک جگہ پہ میں جا کے پھنس گیا, میں نے کہا یار اس کی کیا میننگ ہے, نہیں سمجھ میں آ رہی تھی, حالانکہ میری گریجویشن ہے مطلب میتھس میں, اور میں نے کچھ تھوڑی بہت سائنس پڑھی بھی ہوئی ہے, کوئی فلاسفی بھی, کوئی منطق وغیرہ کا بھی شوق ذوق ہے, تو اس لیے چیزیں پڑھتا رہتا ہوں. ایک جگہ پہ میں پھنس گیا تو مجھے وہ چیز ریلیٹڈ لگی, میں نے کہا یار اس کو کھولنا چاہیے. اب یقین مانے میں 5 فزکس کے جو ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کے پاس گیا, پروفیسرز کے پاس, 2 میتھس کے تھے, इनमें से मेजॉरिटी वो थी जो फॉरन से पीएचडी करके आई थी, यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर्स थे। मैंने कहा ये इबारत फंसी हुई है, हल करें। उन्होंने हाथ उठा लिए। एक लेवल है, ठीक है, वहाँ जाके प्रोफेसर को भी समझ नहीं आती वो साइंस, वो कहते हैं यार समझ नहीं आ रही ये क्या बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रही, सही बात है, क्योंकि उसका अपना एक लेवल है। तो एक लेवल ऐसा है जहां पीएचडी प्रोफेसर को, जिसने साइंस में फॉरेन से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी पीएचडी की है, वो यूनिवर्सिटी उसको भी समझ नहीं आ रही वो साइंस, तो वो क्या कर रहा है, बिलीफ सिस्टम है अरे भाई, बिलीफ सिस्टम है। आप साइंटिस्ट के ऊपर ईमान ला रहे हैं, वही यही है कि हम पैगंबर की बात मान लेते हैं कि उसको सिग्नल रिसीव हुई है, जैसे वहां साइंस नासा की बात मान रहे हैं कि उसको सिग्नल रिसीव हुई है। ओ भाई बात यह है कि नासा, वो कहते हैं जी नासा दिखा सकता है, अच्छा क्या सारों ने देखा है, या सारे जाके नासा में देखेंगे कि उसको सिग्नल रिसीव हुई है या कैसे हुई है, नहीं फिर भी मानेंगे ना, बिलीफ सिस्टम है, सेम है। तो हम ये कह रहे हैं कि खालिक की तरफ से सिग्नल आ गया, आखिरी मरतबा आया मोहम्मद रसूल सल्लम पे, जो मैसेज आया वो कुरान की सूरत में आया, ठीक है। अब वो मैसेज हम तक कैसे पहुंचेगा, जिन्होंने ये बात मान ली ना, अब नया क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया। हम नैरो डाउन कर रहे हैं ना, वहां से चले हैं, ठीक है, अब हम नैरो डाउन हो रहे हैं, अब यहां पर आ गया, यहां तक तो मान लिया। अब बात यह है कि यहां आगे फिर लोगों ने इख्तलाफ करना शुरू कर दिया कि मोहम्मद रसूल सल्लम से वो मैसेज मुझ तक कैसे पहुंचेगा, 14 सदियां, क्या ख्वाब में मुझे कोई आके बताएगा कि मोहम्मद रसूल सल्लम पे ये मैसेज नाजिल हुआ था, मुझे कोई वजदान होगा, मुझे कशफ से मालूम होगा, मुझे कोई आके खबर देगा, कैसे पता चलेगा मुझे, ये अगली बात है। रिवायत और फहम, वो मैसेज जो सिग्नल आया है मोहम्मद रसूल सल्लम पे, मैंने ये मान लिया कि आखिरी मरतबा आ गया, अब वो अल्लाह का सिग्नल मुझ तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है, 1400 साल गुजर गए। पहली बात तो ये मैंने देखनी है कि वो महफूज भी है कि नहीं है, महफूज है तो वो मुझ तक कैसे पहुंचा है 1400 साल का सफर करके, ठीक है। दूसरा, जब मुझे ये मालूम होगा कि ये पहुंच गया और महफूज सूरत में पहुंचा है, 1400 साल में इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुई, फिर मैंने उसको अंडरस्टैंड करना है, उस मैसेज को मैंने डीकोड करना है, तो वो डीकोडिंग जो है वो मैंने कैसे करनी है, ये है फहम, हर्मन्यूटिक, एक ट्रेडिशन है, एक फहम है। अब हम उस मैसेज को कि वो कैसे पहुंचेगा, जैसे हमने कहा कि नासा को सिग्नल रिसीव हो गया, हमें कैसे मालूम होगा, हमें CNN बताएगा, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो रसूल सल्लम को जो मैसेज रिसीव हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा, फिर ये है कि उस मैसेज को डीकोड कौन करेगा, जो मैसेज एलियंस ने इनको भेजा है नासा को, इसको डीकोड कौन करेगा, साइंटिस्ट करेंगे ना, तो यहां पे कौन डीकोड करेगा, वो जो मैसेज मुझ तक पहुंच गया उसको डीकोड कौन करेगा, कौन खोलेगा कि ये मैसेज में क्या है, पैगाम क्या है, ठीक है, क्योंकि जारी बात है वो मेरी लैंग्वेज में तो नहीं होगा। ये अगली बात है, ये अगला एक बड़ा क्वेश्चन आ गया। अल्लाहु अकबर, खालिक की तरफ से हम बार बार खालिक यानी क्रिएटर, ठीक है, इसलिए कि आपने खालिक मान लिया ना, इसको लॉजिकल बनाने के लिए कि खालिक जो है जरूर सिग्नल भेजेगा, जो आपका क्रिएटर है अपनी क्रिएशन से लातालुक नहीं हो सकता, ठीक है, जैसे इंसान अपनी क्रिएशन से लातालुक नहीं हो सकता, खालिक की तरफ से दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए नाजिल किए गए अबदी और आसमानी जाब्ता हयात को दीन इस्लाम का नाम दिया गया, ठीक है, ये अबदी भी है और आसमानी, जो आसमान से आया, स्पेस से आया, ठीक है, और उस मैसेज का नाम है दीन इस्लाम, और उसके अलावा किसी भी जाब्ता हयात को कबूल करने या उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने का इनकार कर दिया गया। अब ये साथ साथ आयात चल रही हैं, ठीक है, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, ठीक है, अल्लाह के नजदीक दीन क्या है, इस्लाम ही, ठीक। दूसरा क्या है कि इसके अलावा किसी भी जाब्ता हयात को कबूल करने या उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने से इनकार कर दिया गया। वह मैं यब तक गैर इस्लामी दीन फल युकबल अमिन, जो इस्लाम के अलावा दीन लेके आया कबूल नहीं किया जाएगा। दीन क्या है, जिंदगी गुजारने का तरीका है, कोड ऑफ लाइफ है, ठीक है, वे ऑफ लाइफ है, तीन दो चीजों का नाम है, कोड ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। अगर आप उस मैसेज के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे जो सिग्नल्स में आपको रिसीव हुआ, लास्ट सिग्नल में जो मोहम्मद और रसूल सल्लम पे आए, अगर आप उसके मुताबिक तो देखें किसी ना किसी कानून और जाब्ते के मुताबिक तो जिंदगी गुजारेंगे ना। क्या यह मुमकिन है कि दुनिया बगैर कानून के चले? वो कहते हैं ना जी मजहब में जबर है। क्या कहते हैं? मजहब में और ये करो ये ना करो। चलो ठीक है, मजहब को साइड पे रख देते हैं, आए हम मंतकी बुनियादों पे बात करते हैं ना, अकली बुनियादों पे आप गुफ्तगू करें। मजहब को साइड पे कर दिया, अब मुझे बताएं सोसाइटी को चलाने के लिए कानून की जरूरत है कि नहीं है? जिन पूरे यूरोप में रिलीजन का कोई अमल दखल है स्टेट में, रिलीजन को उन्होंने साइड पे कर दिया ना, स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है रिलीजन का, उनको हम सेकुलर स्टेट्स कहते हैं, रिलीजन साइड पे हो गया। अब कानून के नाम पे पाबंदियां, आप कानून किसका नाम है बताएं तो सही? जो मैन मेड लॉज हैं, इंसानों ने जो कानून बनाए हैं, ये क्या है? पाबंदी है ना भाई, ट्रैफिक के इशारे पे रुक जाना है, लाल बत्ती रेड लाइट हो तो तुम रुक जाओ। ओ भाई मैं क्यों रुकूं? नहीं तुमने रुकना है भाई, कोई लॉजिक कोई रीजन? हाँ है, लॉजिक रीजन है, एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो अगर एक्सीडेंट नहीं हो रहा, गाड़ी नहीं है तो फिर रुकूं? हाँ फिर भी रुको, बात समझ रहे हो? अगर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, रेड लाइट चल रही है, आप कहते भाई लॉजिक ये दी कि एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो मैं तुम्हारी लॉजिक को एड्रेस करता हूं, रात के 12 बजे कोई गाड़ी नहीं है दूर दूर तक, रेड लाइट चल रही है, मैं निकल जाऊं? वो कहेगा नहीं। तो कहे किधर गई तेरी लॉजिक? तो बात यह है कि आप हमसे पाबंदी करवा रहे हैं, ये मानो वो ना मानो, ये भी तो मजहब है। कानून क्या है? वो मजहब है, पाबंदियों का नाम है, कुछ फराइज हैं, कुछ मुहर्रमात हैं, हराम है, ये करने हैं ये नहीं करने। तो आपने अल्लाह की बातें नहीं मानी तो आपने इंसानों की बनाई हुई मान ली, आपने उसको कानून कह दिया, बस एक धोखा है बस, और क्या मतलब? हकीकत क्या है कानून की? कानून की हकीकत, कानून जबर है भाई, मेरी मर्जी है, मैं रेड लाइट पे रुकूं ना रुकूं, ठीक है, हाँ हादसे से मुझे बचना चाहिए। तो बहुत सारी जगहों पे आप लॉजिक भी नहीं दे सकते अपने कानून की, लेकिन वो आपसे पाबंदी करवाते हैं। तो इसलिए कोई भी सोसाइटी है, जैसे देखें अगर वो कानून नहीं बनाएंगे, कानून नहीं बनाएंगे, एक इंसान दूसरे को कत्ल कर देता है, वो कहते हैं कोई कानून नहीं है, तो फिर क्या होगा? कत्ल वगारत बढ़ेगी। एक इंसान दूसरे का माल जो है वो चुरा लेता है, कानून नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? माल आपका सिक्योर नहीं रहेगा, ठीक है, जुल्म पैदा होगा ना। तो अब इंसानों ने क्या किया? कवानीन बनाए। तो अब हम कहते हैं खुदा कानून दे तो हमें एतराज है, हम खुद बना लें तो इतराज नहीं है, मतलब खुदा पाबंद करे तो इतराज है कि खुदा क्यों जबर कर रहा है, और आप जो है वो कानून बना के अपने जैसे इंसानों के ऊपर जबर करें तो फिर कोई इतराज नहीं। तो भाई आप भी तो खुदा वाला काम कर रहे हैं, और कानून के सारे मुल्क ने बनाया है, और पार्लियामेंट ने बनाया है ना, पार्लियामेंट में कितने लोग पहुंचते हैं? 300-350, ठीक है, आबादी कितनी है सिर्फ पाकिस्तान की देख लें, 22 करोड़ लोगों को क्या ये कानून पसंद हैं जो बनाए गए? बहुत सारे कानून से आपको इख्तलाफ है, मुझे इख्तलाफ है, लेकिन वो हैं, हो सकता है मेजॉरिटी को इख्तलाफ हो उन कानून से। इवन के अमरीका में सदियों ऐसे कानून रहे, काले गोरे की तकसीम रही, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन रही, ठीक है, वहाँ कानून के हवाले से ये बात रही कि जी औरतों के हकूक नहीं है, वो बहुत बाद में आके औरतों को वेमेन राइट्स मिले, वोट का हक मिला, पहले औरतों के लिए वोट का हक नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन थी, सारा कुछ था, ठीक है। अब बात क्या है? बात यह है कि ये कानून किन लोगों ने बनाए? 300-250-400 लोगों ने कानून बनाया, करोड़ों लोगों के ऊपर लागू कर दिया, उनकी मर्जी नहीं पूछी कानून बनाने से पहले सबकी। फिर यह है कि क्या सब एग्री करते थे कि ये कानून बनाया जाए? कभी भी नहीं होगा, इख्तलाफ हो जाएगा ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे यूरोप में ये इख्तलाफ है, ये बहुत बड़ा इख्तलाफ है उनमें, कि कत्ल की सजा जो है वो डेथ पेनल्टी होनी चाहिए कि नहीं। डेथ पेनल्टी समझते हैं ना, यानी एक कातिल है, एक बंदे ने कत्ल कर दिया, उसकी सजा कत्ल ही हो या उसकी सजा जेल होनी चाहिए। यूरोप में अब आप देखते हैं कि अक्सर स्टेट्स में ये डिबेट हुई और उन्होंने कहा कि जी कत्ल की जो सजा है ना वो कत्ल नहीं होनी चाहिए, एक बंदा पहले ही मारा गया दूसरा भी मार दो, ये लॉजिकल नहीं है, ठीक है, आप क्या करें उसको जेल करें और साइकोलॉजिस्ट दें उसको जो उसकी ذہنی تربیت کریں, یہ کام کریں. پاکستان کے اوپر بھی پریشر ہے ابھی کہ آپ بھی یہ پھانسی کی سزا ختم کریں. ایون کہ بہت سارے اسٹیٹس میں ہے, امریکہ میں بھی ہے اور اسٹیٹس میں بھی ہے, پھانسی کی سزا ہے, ڈیتھ پینلٹی ہے بہت سے ممالک میں, لیکن اکثر میں نہیں بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ انسانوں سے پوچھیں گے تو خود انسانوں کا اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے, امریکن جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے تو ڈیتھ پینلٹی نہیں دے رہے, لیکن دے رہے ہیں. تو گویا کہ اگر ہم انسانوں کی طرف جائیں گے تو خود انسانوں کا اختلاف ہو جائے گا کہ اس جرم کی یہ سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہونی چاہیے. تو یہ مسائل ہیں, اور اس کے باوجود سب کچھ وہ مذہبی جبر ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مین میڈ لاس کیا ہیں؟ مذہبی جبر ہیں. یا تو ہر انسان سے آپ نے رائے لی ہو نا, جس اسٹیٹ میں آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, آپ نے رائے تو نہیں لی. بعض اوقات میجورٹی کے خلاف آپ ایک قانون نافذ کر دیتے ہیں. یہ مذہب پہ جتنے اعتراضات ہیں یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے. خیر, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری ضابطہ حیات جو ہے یہ دین ہے, دین اسلام ہے, یہ ہمارا اسلامک لا آپ کہہ لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی خالق اس نے, اگر تم نے مان لیا نا کوئی خالق ہے, اگر مان لیا, دیکھیں بات یہ ایتھیسٹ سے ہمیشہ جو ہے نا بیسک بنیادیات کے اوپر وہ کہے گا جی رسول اللہ علیہ وسلم کی بارش, اس کو کبھی چھوڑو تم بارہ شادیاں, یہ بہت بات کا مسئلہ ہے. پہلے بتاؤ خالق ہے کہ نہیں, کریٹر ہے, مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو, پھر ٹھیک ہے سگنل بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا, دوسرا کوئسچن یہ, بھیجے گا تو کہاں بھیجے. ٹھیک, اب مان لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سگنل آ گیا ہے, ٹھیک ہے کتاب آ گئی, میسج آ گیا, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اگر خالق ہے تو آپ نے خالق کی پابندی کرنی ہے. یہ تو ایسی ہے کہ انسان ریبوٹ بنائے اور ریبوٹ کہے کہ تم کون تو میں کون. ٹھیک, ایسا نہیں ہے نا. ویسے یہ ایک ڈبیٹ ہے, اس کا کیا نام ہے جس نے علی بابا والی ویب سائٹ بنائی, میک چاک جا میک جیک ماں, جیک ماں, اس کی اور اس کی جو ہے نا یہ جو صاحب تھے مائکروسافٹ والے ونڈو والے, کیا نام ہے, بل گیٹس, ان کی ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے. اچھا یہ ان لوگوں کی ڈیبیٹس دیکھا کریں, دماغ بڑا کھلتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سمجھتے ہیں؟ اچھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ ہے, ایک تو ہمارا انسانی ذہانت ہے نا, انسان کی ذہانت, ایک یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت. مصنوعی ذہانت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کمپیوٹر کی ذہانت, کمپیوٹر بھی ذہین ہے نا, دماغ ہے تبھی کام کر رہا ہے, وہ کیلکولیشن ایسے تو نہیں کر رہا بغیر دماغ کے, دماغ ہے لیکن یہ آرٹیفیشل ہے, مصنوعی ہے, انسان نے یہ دماغ بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی دماغ ہے, کمپیوٹر کے اندر بھی, لیپ ٹاپ میں بھی ہے, ریبوٹ میں بھی دماغ ہے. دماغ ہے تو مطلب یہ سارا پیچھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چل رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ فیس بک پہ ایک ایڈ دیکھتے ہوں گے, اس کو آپ کلک کرتے ہیں, جیسے موبائل کا ایک ایڈ ہے, اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈز ہی آتے چلے جاتے ہیں, کیا ہے پیچھے پوری ذہانت ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس استعمال ہو رہی ہے. آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں, اسی جیسی ویڈیوز آپ کو وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے, کیا ہے وہ ایسے ہی ہے, مطلب کوئی ایٹ رینڈم ہو رہا ہے آپ کا خیال ہے, نہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے ساری. تو یہ ہوا کہ کیا انسان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں وہاں تک پہنچ جائے گا, یعنی ایسا ریبوٹ بنا لے گا جو انسان سے زیادہ ذہین ہو, یہ ایک ڈسکشن ہوئی. جیک ما کا کہنا یہ تھا غالباً, وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ انسان کریٹر ہے, کبھی ایسا ریبوٹ نہیں بنے گا جو انسان کو چیلنج دے سکے اور اسے کہے کہ جا اب تو پتر جا اب میری حکومت ہے. خیر اس پہ بھی انہوں نے ایک مووی بنائی ہوئی ہے, وہ اس کے نام سے کیا نام ہے, میٹرکس کے نام سے. اس کا کانسیپٹ یہ تھا میٹرکس کا کہ انسان نے ریبوٹس بنائے اور وہ ریبوٹس اتنے ذہین ہو گئے کہ انہوں نے انسانوں کو فارغ کر دیا, چھٹی کروا دی پلانٹ ارتھ سے اور قبضہ کر لیا یہاں پہ. اب انسان بھاگتا پھر رہا ہے کہ یار ریبوٹ سے جو ہے نا ہم یہ زمین واپس کیسے لیں. یہ وہ فیوچر کو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جہاں جا رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. تو جیک ما کا کہنا یہ تھا کہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں انسان کوئی ایسی پروڈکٹ لے آئے کہ انسان سے زیادہ وہ ذہین ہو اور وہ انسان کو چیلنج کرے اور سائڈ پہ کر کے. بل گیٹس کا کہنا تھا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئندہ چند دہائیوں میں, ڈیکڈس میں, इतना जो है वो कर ले अपना, आगे बढ़ जाए कि इंसान पीछे रह जाए। खैर बहरहाल ये एक अलहदा डिबेट है। हम इसमें ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि इंसान जो है क्रिएटर का मुकाबला कर सके, ठीक है, अपने क्रिएटर का, क्योंकि इंसान की क्रिएशन तो कुछ भी नहीं है ना। इंसान की क्रिएशन जो है, अभी जो चाइना की डॉल सामने आई है, अभी वो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, ठीक है, अच्छी काविश है, इंसान ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन बहरहाल बहुत पीछे अभी इंसान की निस्बत, यानी उसमें कभी आप इमोशंस नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते आप उसमें रू नहीं डालेंगे तो इमोशंस कहां से आएंगे, फीलिंग्स कहां से आएंगे। हाँ, वो रिस्पांस कर सकता है इमोशनली आपको, लेकिन वो भी अपने दिमाग से रिस्पांस करेगा, यानी उसके इमोशंस उसके दिमाग में है, समझ रहे हैं बात, यहां नहीं है, ठीक है। हर बार तो हम ये बात कर रहे हैं कि इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने खालिक से बेहतर कानून ला सके। हर कौम की तरफ जो है वो नबी और रसूल भेजे गए, हर कौम की तरफ सिग्नल आए हैं, ठीक है। 62, वैम मिन उम्मतिन इल्ला खलाफिया नजीर, कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसकी तरफ कोई डराने वाला ना आया हो। सवाल पैदा हो सकता है ना कि क्या हर एक की तरफ फिर सिग्नल आए? हाँ, हर एक की तरफ आए। आदम अलैहि सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया का ज़ाब्ता हयात एक ही था, हमने कहा सिग्नल सेम था, ठीक है। यही उस सिग्नल, ये इस चीज की बुनियाद है कि वो सिग्नल एक जगह से आ रहा है, अगर वो डिफरेंट पॉइंट से आता तो उस सिग्नल में क्या होता, उसके मैसेज में इख्तलाफ होता। तो मतलब बहुत फर्क है ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। वो इतना तो मानते हैं ना कि जीसस कोई शख्सियत थी, भले रसूल ना माने, चलो इतना तो मानेंगे ना कि जीसस नाम की कोई शख्सियत थी, या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शख्सियत पर्सनैलिटी हो गुजरे हैं, या हजरत मूसा कोई पर्सनैलिटी हो गुजरे हैं। ये भी नहीं मानेंगे तो फिर वही बात है कि कौवा जो है वो सफेद है। तो अगर वो पर्सनैलिटी थे, उनके मिलियन नहीं बिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और उनके मैसेजेस मौजूद हैं जो उनकी तरफ मंसूब हैं, और वो तवातुर से मनकूल हैं, और उन मैसेजेस में कोई इख्तलाफ नहीं है, छोटा मोटा इख्तलाफ है लेकिन बड़ा मेजर इख्तलाफ नहीं है, यानी सब तौहीद की बात कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लम तक तमाम अंबिया का ज़ाब्ता हयात एक ही था, और वो इस्लाम है। अगरचे ज़ाब्ता हयात की तशरीयात और तौज़ीहात के, जिसे शरीयत कहते हैं, ठीक है, बुनियादी मैसेज एक था, लेकिन उसकी तशरी और तौज़ी एक है कॉन्स्टिट्यूशन आइन और एक है ला, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और ला में तो फर्क समझते हैं ना, ठीक। तो इस्लाम आप यूं समझ लें बेसिकली वो पॉलिसी, पॉलिसी के उमूर होते हैं, पॉलिसी के हवाले से गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और ला जो है मुख्तलिफ हो सकता है उसकी तशरी और तौज़ी, ठीक है। तो ये जो ला है जिसे हम शरीयत कहते हैं, ये अहवाल ज़ुरूफ़ में तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ अदवार और अकवाम में मुतनव्वे रही, ला मुख्तलिफ रही, ठीक है। इसमें क्या है, 63 में अल्लाह के सल्लम ने कहा ना कि अंबिया के हैं इखवतुल अल्लात, ये बहुत अहम है हदीस, अंबिया पटर्नल ब्रादर्स हैं, पटर्नल ब्रादर समझते हैं ना अल्लाती भाई, जिनका बाप एक हो, माँ जुदा हो, ठीक है। उम्महातुम शत्ता, माएँ अंबिया की क्या हैं, मुख्तलिफ हैं, माँ से मुराद क्या है, शरीयत, कोड ऑफ लाइफ, ठीक है, लेकिन दीन उम वाहिद, बाप एक है, दीन एक है, बुनियादी मैसेज एक है, बाकी मतलब नमाज सब ने पढ़नी है, ठीक है, रोजा सब ने रखना है, बाकी तफसीलात में इख्तलाफ हो सकता है कि वहां नमाज जो है वो इस तरह से थी, यहां रोजा इस तरह से है, ये बुनियादी मैसेज सेम था। ये ऐसी है कि भाई जो किसी को कत्ल करेगा तो उसकी सजा क्या है, कत्ल है, हाँ, इस पे सबका इत्तेफाक हो गया कि कातिल की सजा क्या है, कत्ल है, किसास, हाँ, फांसी दे के कत्ल करना है, तलवार से गर्दन उतारनी है, ठीक है, या आपने उसे किसी इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के, ठीक है, करंट मारना है, या आपने उसको जहर का टीका लगाना है, या आपने उसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके ब्रस्ट मार देना, मुख्तलिफ तरीके हैं ना, इसी तरह से है ना, अमेरिका में गालिबन इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाते हैं, हमारे यहाँ फांसी देते हैं, ठीक है। आप इधर चले जाएँ, ये आपकी जो कंट्रीज़ हैं, इधर के, यार अभी मेरे जहन में बिल्कुल नाम उतर गया, वहाँ पे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके ये क्या नाम है, सिंगापुर नहीं, वो ये चाइना के साथ जो है, नहीं खैर बाहर अभी मेरे जहन में नाम नहीं, अचानक ही उतर गया बाहर, तो वहाँ जो है वो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके क्या करते हैं, वो मार देते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ, तो असल बात ये है कि वो इख्तलाफ रहा है, इसको हम कहते हैं कानून का तशरी और तोजी का इख्तलाफ, वो हो सकता है, ठीक है। शरीयत को यानी जाबता है हयात की तफसीलात और जुजियात की तरह मिनहाज यानी शरीयत को फ़र्द और माशरे में जारी और सारी करने का तरीका भी हर कौम के लिए मुख्तलिफ रहा। अच्छा, एक है इस्लाम, इस्लाम तो एक ही रहा है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, यानी बेसिक मैसेज एक रहा, ठीक है। जो उसकी तशरी थी हमने कहा वो है कानून, वो है शरीयत, वो मुख्तलिफ रही। फिर यह है कि उस कानून को आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसमें भी इख्तलाफ रहा, वो क्या है, वो है मिनहाज, वे ऑफ लाइफ, कानून की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करनी है, इम्प्लीमेंटेशन में भी इख्तलाफ रहा, उसमें कोई हरज नहीं है, इतने इख्तलाफ में कोई हरज नहीं है। ये अहवाल ज़रूफ़ की वजह से, यानी मुख्तलिफ कल्चर्स होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो आप कह लें बैकग्राउंड्स, मुख्तलिफ जो है वो कौमों की नफसियात होती, उनको सामने रख के आप मुख्तलिफ तरह से जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, इसमें मतलब गुंजाइश है, ठीक है, शरीयत में और मिनहाज में गुंजाइश है। अच्छा, उसमें क्या है जी, मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद क्यामत तक के लिए अल्लाह का दीन इस्लाम है। शरीयत क्या है हमारी, मुहम्मदी, एक मूसवी शरीयत है, ईसवी शरीयत है, इस्लाम दीन सबका एक ही राय। मूसा अलैहिस्सलाम का दीन भी क्या था, इस्लाम, ईसा अलैहिस्सलाम का दीन भी इस्लाम था, आदम अलैहिस्सलाम का दीन भी इस्लाम था, मोहम्मद और रसूल सल्लम का दीन भी क्या, इस्लाम है। हाँ, शरीयत मुख्तलिफ थी, जो उस इस्लाम की क्या थी इंटरप्रटेशन, वो मुख्तलिफ रही है, ठीक है। शरीयत मूसवी, शरीयत ईसवी, शरीयत मुहम्मदी ये कह सकते हैं, और फिर उस शरीयत को इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका था वो भी क्या है, मुख्तलिफ रहा, ठीक है। और मिनहाज, हमारा मिनहाज क्या है, शरीयत मुहम्मदी, और मिनहाज हमारा क्या है, दावत जिहाद, यानी शरीयत को आपने माशरे में कैसे जारी और सारी करना है, वो टूल्स क्या है, वो दो है, एक दावत है, एक जिहाद है, ठीक है। मुसलमानों में दावत के जरिए, मुसलमानों से जिहाद नहीं है, ये बात जहन में रख लें, मुसलमान जो मुसलमान से लड़ता है कुरान ने उसको कहीं जिहाद नहीं कहा, वो फसाद हो सकता है, जिहाद नहीं, जिहाद हमेशा काफरों से होता है, ठीक है। वो हम आगे चल के देखेंगे कि वो उसके क्या उसूल, उसके भी उसूल जवाबित हैं, ऐ नहीं कि बस उठ के खड़े हो जाओ बस, ठीक है, हाँ अपना जो है वो नुकसान करवा लो, ऐसे नहीं। तो दावत है, यानी मुसलमानों में जब आपने शरीयत को फैलाना है, जारी और सारी करना है, तो किस क्या मनज होगा, दावत। और जब आपने गैर मुस्लिम सोसाइटीज में आपने अगर शरीयत को फैलाना है, आम करना है, तो वहां दावत भी है, दावत भी है, ये नहीं कि वहां दावत नहीं है सिर्फ जिहाद है, वहां दावत भी है और जिहाद भी है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास हालात कैसे हैं। देखें, अगर आप पावर में होंगे ना, तो आपको जारी बात है, देखें जो सुपर पावर्स होती हैं ना, जैसे अमेरिका, अब अमेरिका को क्या कोई किताब मुकद्दस की ज़रूरत है, सेक्रेट बुक की, कि जिसमें लिखा हो कि भाई तुम अपनी आइडियोलॉजी फैलाओ, नहीं, कोई सेक्रेट बुक नहीं है ना, फैला रहा है ना, अपनी आइडियोलॉजी फैला रहा है ना, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, कैपिटलिज्म, ठीक है। चाइना है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, क्या उनकी तरफ कोई किताब उतरी है कि हमने अपनी आइडियोलॉजी फैलानी है, नहीं, फैला रहा है ना वो, आपस में उन दोनों के क्लैशेज भी हैं। तो अगर आप सुपर पावर हैं तो आप अपनी आइडियोलॉजी फैलाएंगे, वही इस्लाम ये कहता है कि अगर इस्लामिक स्टेट, इस्लामी रियासत पावर में है, तो वो अपनी आइडियोलॉजी फिर क्या करेगी, जिहाद के जरिए से फैलाएगी। लेकिन अगर वो पावर में नहीं है, तो फिर जिहाद नहीं है, फिर नॉन मुस्लिम्स के लिए भी क्या है, दावत। आप कम, रसूल सल्लम ने मक्का में क्या किया, दावत दी। हाँ, जब मदीना में चले गए, पावर आ गई, जगह मिल गई, कुव्वत आ गई, तो फिर आप सल्लम ने क्या किया, जिहाद किया, जज़ीरा-नुमा अरब में, ठीक है, दीन को गालिब करने के लिए, फैलाने के लिए, फिर आप सल्लम ने जिहाद किया। तो मुसलमानों के लिए सिर्फ दावत है, नॉन मुस्लिम्स के लिए दावत भी है, जिहाद भी है, ये मेथडोलॉजी है इस्लाम को फैलाने की, ठीक है। लेकिन उसमें सारा माहौल के ऊपर है। ये नहीं है कि चार बंदे हों और अब जिहाद शुरू कर दें, अपना नुकसान करें।
खिदमत का ऑप्शन आएगा
जी,
खिदमत के जरिए
आगे आ रही है, सारी बातें आ रही। अब इन तीनों पर उर्फन इस्लाम के लफ्ज का इतलाक दुरुस्त है, ठीक है। तो इस दीन के दो पहलू हैं, एक रिवायत कि ये दीन मुझ तक कैसे पहुंचा है, और दूसरा फाम कि मैंने इसको समझना कैसे है, ठीक है। जहां तक दीन की रिवायत की बात है, अब पहली बात आ गई, तो हुसूल इल्म के जराए मींस ऑफ नॉलेज में मुस्तनद तरीन और जामे तरीन जरिया खबर है, और वही खबर ही की एक किस्म है। देखें ये सारी बुनियादें हैं, ये सारी बुनियादें, ये एक एक जुमला जो है ना, इसके पीछे पूरा पूरा बैकग्राउंड है जिसको आंसर किया जा रहा है। वो बैकग्राउंड आपके जहन में नहीं है तो आप समझे कि पता नहीं क्या बात हो रही है। क्या ये जुमला क्या है? हुसूल इल्म के जराए में मुस्तनद तरीन और जामे तरीन जरिया खबर है, और वही खबर ही की एक किस्म है। यानी अब देखें पीछे बैकग्राउंड, अब बहस क्या हो रही है, डिस्कशन क्या हो रही है सोसाइटी में, सवालात क्या हैं। वो कहते हैं कि जी हुसूल इल्म का मुझे इल्म कैसे मिलेगा, साइंस क्या कह रही है, और भी बयानी है ना, हम खला में तो नहीं बैठी हुई है ना, साइंस का बयानिया क्या कह रहा है कि इल्म को हासिल करने का मुस्तनद तरीन जरिया कौन सा है, बताएं ना। फाइव सेंसेस, हवासे खमसा, ठीक है। मैंने एक चीज को देखा, मैंने किसी चीज को सुना, मैंने किसी चीज को टच किया, मैंने किसी चीज को चखा, ठीक है। ये सब क्या है, ये फाइव सेंसेस है मेरी, जिनके जरिए से जो इल्म मुझे हासिल हो रहा है ये असल में इल्म है, बाकी सब क्या है, गपशप है। हम क्या बात कर रहे हैं, ये सिर्फ दावे नहीं कर रहे, हम दावे नहीं कर रहे, इसको आपने लॉजिक की बुनियाद पे प्रूव भी करना है। फिर ये सिर्फ ताकि रिलीजियस क्लेम मजहबी दावा ना रह जाए। उसूल इल्म के जराए यानी जिन जराए से इल्म हासिल होता है, हम इनकार नहीं कर रहे कि फाइव सेंसेस से इल्म हासिल नहीं होता, हम कह रहे हैं उससे भी हासिल होता है, और एक इल्म वो है जो कि खबर से हासिल होता है, होता है कि नहीं होता। अब हम मजहब को छोड़ें, ये जो अखबारात हैं, ठीक है, इसके जरिए से आपको कोई नॉलेज मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं? उन सब ने CNN खोला हुआ है ना, BBC उन्होंने खोली है ना, हमने तो नहीं खोली। और दी इंडिपेंडेंट हो जाए या और इस तरह के जितने भी जो है वाशिंगटन पोस्ट हो जाए, वो कौन निकाल रहा है? वही लोग निकाल रहे हैं। तो अगर उसके जरिए से इल्म नहीं मिलता तो वो सारी खबरें क्यों पब्लिश कर रहे हैं? तो आप अज्यूम सोचें, सुबह से लेकर शाम तक कितना इल्म है जो आप फाइव सेंसेस से हासिल कर रहे होते हैं, और कितना है जो आपको खबर से मिल रहा होता है, आपके दोस्त मिसाल के, तो आपके घर वाले, ये हो गया वो हो गया, बात समझ रहे? आपकी बेगम साहिबा जो है वो अपने ससुराल से होके आएंगी, सारी खबरें सुनाएंगी, ठीक है, मोहल्ले की सारी खबरें सुनाएंगी, आप कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ, हुआ है, ठीक है। आपके दोस्त जो हैं वो आपको बताएंगे ये हुआ वो हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, जब तक मैं खुद नहीं देख लूंगा नहीं मानूंगा। आप किताबों में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तारीख पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे जो लिखा हुआ है ये सब झूठ है, मैं नहीं मानूंगा। मैं आप सिकंदर आजम को देख सकते हैं, कायदे आजम को सुन सकते हैं, चख सकते हैं, मानते हैं कि थे, कैसे मालूम हुआ, हवा से खमसा से या खबर से? सारी आपकी तारीख क्या है, हिस्ट्री क्या है, खबर, खबर उड़ा देंगे, हिस्ट्री में कुछ साबित कर सकते हैं? पहली जंग अजीम हुई थी, दूसरी हुई थी, कैसे मालूम हुआ? सारी खबर, सब खबर है। अरस्तू था, अफलातून था, उसकी ये फिलॉसफी थी, उसके ये नजरियात थे, कैसे मालूम होगा? खबर भी कितनी पुरानी, 2500 साल पुरानी खबर आप मान के बैठे हुए हैं। सिर्फ मान के नहीं बैठे, डिपार्टमेंट खोल के बैठे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, सुकरात पढ़ा रहे हैं, अफलातून के डायलॉग्स पढ़ा रहे हैं, अरस्तू पढ़ा रहे हैं, उसकी मंतिक पढ़ा रहे हैं। क्यों, कैसे प्रूव करेंगे? खबर خبر کے ذریعے سے.
انکار تو نہیں ہوگا نا,
ہم انکار نہیں کر رہے حواس کا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نالج آپ پڑھا رہے ہیں, ہم سیکولر سائنسز پہ آ جاتے ہیں, ہم سیکولر سائنسز پہ آ جاتے ہیں. سیکولر سائنسز میں آپ سب سے پہلے فلسفی کو لیں مثال کے طور پہ, کیسے آپ کو معلوم ہوئی؟ خبر کے ذریعے سے. سارا علم فلسفی کا آپ کو کیسے ملا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک علم ملے گا کیسے, ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیسے ملا فلسفی کا علم؟ خبر سے ملا. اور فلسفی تو ایسی چیز ہے جو سائنس سے ثابت بھی نہیں کی جا سکتی, اور فلسفی تو بیس ہی اسی پہ کرتی ہے نا, ساری دماغ کی ایکسرسائز ہے نا, دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں نا, ثابت کر سکتے ہیں اس کو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارسطو نے یہ کوئی ایکسپیریمنٹ کیا تھا ہم بھی کر لیں, سقراط نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا ہم بھی کر لیتے ہیں, چلو ثابت ہو جائے گا. کیسا ہوتا ہے؟ اس کے خیالات ہیں, اس کے نظریات ہیں, ان کا سر پیر ہے کہ نہیں ہے. خیر ہم یہ کہہ رہے ہیں, اسی طرح سے سائنس لے لیں, سائنس کو لے لیں, ایون نیوٹن نے یہ کہا, چلو ٹھیک ہے آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ سیب جو ہے نا وہ زمین پہ گرتا ہے اوپر نہیں جاتا, ٹھیک ہے, لیکن نیوٹن جو ہے اس کے سامنے سیب گرا تھا, یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. او بھائی سیب تو میرے سامنے گرے گا نا, آج جو گرے گا وہ تو میرے سامنے گرا ہے, یہ میرے لیے فائیو سینسز ہے. نیوٹن کے سامنے گرا تھا اور اس نے یہ نتیجہ نکالا تھا, یہ خبر ہے. سائنس ساری آپ کی کیا ہے؟ خبر ہے. فلاں سائنسٹس نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, ساری سیکولر سائنسز آپ کی چلی خبر پہ رہی ہیں. تو حصول علم کا مستند ترین اور جامع ترین دو الفاظ ہیں, مستند ترین اور جامع ترین ذریعہ. مستند ترین کا مطلب اتھینٹک, موسٹ اتھینٹک, اور جامع کمپریہنسو, وہ خبر ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے فائیو سینسز سے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا, ہم اپنا آپ کا ایمان بھی اس پہ دیکھیں. بات یہ, وہ کہتے ہیں جی خبر میں نا سچ جھوٹ ہو سکتا ہے, مان لیا ٹھیک ہے سچ جھوٹ ہوتا ہے خبر میں, لیکن کیا ہم اس میں جھوٹ کا امکان ہونے کی وجہ سے ساری خبر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں؟ نہیں نا پھینکتے, ٹھیک ہے. بہت سی خبریں ہم قبول کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ٹولز ہیں جس کے ذریعے سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں سچ جھوٹ کو, ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے نا, کوئی نہیں کہتا کہ سکندر اعظم جو ہے وہ یونان کا بادشاہ تھا, یہ سب جھوٹ ہے. کوئی کہتا ہے؟ ساری خبریں ہیں نا, وہ تو مان لی نا آپ نے, کہیں آپ کہہ دیں گے جھوٹ ہے, بہت ساری باتیں تو آپ مان کے بیٹھے. تو یہ بات سیم از ہیئر ان دا سائنس, سائنس میں بھی یہی ہے. جو آپ کو حواس خمسہ سے معلوم ہو رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو, وہ ریئلٹی ہو. مثال کے طور پہ یہ ٹیبل ہے, میں نے اس پہ ہاتھ رکھا ابھی, مجھے اس کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں یہ ٹھنڈی ہے, یہ کیا ہے؟ ٹھنڈی. میرے دماغ کو میسج پہنچا کہ یہ ٹیبل کیا ہے؟ ٹھنڈی ہے, ٹچنگ سے, ٹھیک ہے, لمس سے. اگر میری باڈی کا ٹمپریچر جو ابھی اس وقت ہے یہ فرق ہو جائے, میری باڈی کا ٹمپریچر فرق ہو جائے, پھر میں ہاتھ رکھوں گا تو میرا ایکسپیرینس سیم نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟ ڈفرنٹ ہو جائے گا. تو مطلب یہ ٹیبل ٹھنڈی ہے یا گرم ہے, یہ چیز ہو گئی سبجیکٹو, ریلیٹو ہو گئی میرے باڈی ٹیمپریچر سے. تو میں پہلے ریالٹی پہ پہنچا تھا یا بعد میں ریالٹی پہ پہنچا, سمجھ رہے ہیں بات؟ ریالٹی تو کوئی ایک ہے کہ یہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. اچھا اس کو ایک اور طرح سے سمجھے, اچھا ویسے نہانے کا بھی ہم تجربہ کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, باڈی ٹمپریچر کی وجہ سے پانی ہمیں کیا ہے, گرمیوں میں جو ہے وہ باڈی ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے, پانی کا ٹمپریچر سیم ہوتا ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا سرگودا یونیورسٹی میں فزکس کا, اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, کہتا حفصہ میں نے تجربہ کیا, پھر مجھے ٹیچر نے بتایا, میں مانوں نا کہ یہ جو نلکے کا ٹیوب ویل کا پانی ہوتا ہے گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے, سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. تو ٹیچر نے کہا ٹمپریچر اس کا سیم ہوتا ہے, صرف آپ کی باڈی ٹمپریچر فرق ہوتا ہے جس وجہ سے آپ کو ٹھنڈا گرم لگتا ہے. تو سیم ٹیوب ویل کا پانی آپ گرمیوں میں نہائیں گے تو ٹھنڈا لگے گا, سردیوں میں نہائیں گے تو گرم. نلکے کا پانی, یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں, کیوں؟ کیونکہ آپ کا باڈی ٹمپریچر ڈفرنٹ ہو گیا. پانی کا ٹمپریچر سیم رہے گا, بے شک اس کے اندر تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لیجیے گا, دسمبر میں بھی اور جون میں بھی اس کا ٹمپریچر سیم ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ فائیو سینسز سے جو علم آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریلیٹو ہے, وہ یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے. آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں, یہ میز ہے, ٹھیک ہے, इस मेज को मैं देख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि ये क्या है, प्लेन है। ये मेज क्या है? प्लेन है। या आप कह ले कि यहां सामने शीशे की टेबल हो, मैं उसको देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि वो प्लेन है। अगर मैं खुर्दबीन लगा लूं तो वो मुझे प्लेन नजर आएगी? नहीं, उसमें नशेबो फराज हैं, आपको छोटे छोटे गड़े नजर आएंगे। ठीक है, तो आपने जैसे ही अपनी आंख के ऊपर इजाफा कर लिया एक और आंख का, तो आपके लिए रियलिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। ये कुछ चीजें कांट ने बयान की हैं, ये हम नहीं कह रहे कि हमने वहां पे जो उनके बेहतरीन दिमाग थे उन्होंने कुछ चीजों को बयान किया कि बेसिकली ये कहना कि सब रियलिटी फाइव सेंस। अच्छा, आप यूं देखें, एक तजुर्बा आपने बहुत किया होगा, आपको सड़क पे दूर नजर आता है पानी, ठीक है, हाँ, नजदीक जाते हैं पानी नहीं है। ठीक है, हमने उस दिन भी मिसाल दी थी, साइंटिस्ट ये कहते हैं, हमें तो ये बात नहीं ना मालूम, हमारा फील्ड नहीं है ना साइंस, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं बहुत सारे जो सितारे स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं लेकिन वो नहीं है। क्यों नहीं है? खत्म हो चुके, क्योंकि उनकी लाइट जमीन तक पहुंचने में मिलियन ईयर्स लगते हैं, वो खुद खत्म हो गए, उनकी लाइट अब पहुंच रही है, हमें नजर आ रहे हैं लेकिन हकीकत में वो रियलिटी में नहीं है। ऑब्जर्वेशन हो, टचिंग हो, सुनना हो। अच्छा, कभी आप कहते हैं मेरे कान बज रहे हैं, बजते हैं कि नहीं, इसका क्या मतलब होता है? एक आवाज आ रही है लेकिन हकीकत में होता है ना ऐसे? आप साइकोलॉजी में चले जाएं, चलें आपको उनके डिसिप्लिन से बता देता हूं। उनके यहां एक है ऑडियो विजुअल हेलुसिनेशन, अभी जाके गूगल कीजिएगा, हेलुसिनेशन गालबन यही टर्म है, ऑडियो वीडियो हेलुसिनेशन। ऑडियो हेलुसिनेशन ये है, वो ये कहते हैं, ये बाज़ुकात इंसान का दिमाग जो है कोई आवाज़ सुनता है लेकिन हकीकत में आवाज़ नहीं होती। बाज़ुकात इंसान कुछ देखता है, कहता है जैसे बच्चे डर जाते हैं ना बाज़ुकात, ये है लेकिन हकीकत में वो नहीं होता। अब बात समझ? तो कहने का मकसद ये है कि फाइव सेंसेस से जो आपको रिसीव हो रहा है जो डेटा, हम ये नहीं कह रहे कि भाई वो हमने उस पर एतमाद नहीं करना, हम ये नहीं कह रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमने उसकी मुखालफत करनी है, हम ये भी नहीं कह रहे। ठीक है, ये नतीजा निकालेंगे तो ये गलत होगा। देखें, बात ये है, हम फाइव सेंसेस के ऊपर ही चल रहे होते हैं, देख सुन के हम किसी के साथ मामला कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कहना कि जी फाइव सेंसेस से जो कुछ हासिल हो रहा है वो सब ठीक है, खबर में तो झूठ और सच का पहलू है, और उसको आप डिग्रेड करेंगे और आप कहेंगे कि यहाँ ये जो साइंस ने कहा है ना, ये जो रास्ता है ना, ये तो कती है, यहां तो जो कुछ हासिल हो रहा है वो सर्टन 100% बिल्कुल ऐसा ही है जैसे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी डाउट है। जी,
इसमें साइंस में ये कहते हैं कि एक प्रोसेस है, लाइक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, तो इसके बारे में आप कहेंगे? वो तो कहते हैं कि ये सारी चीजें इन 7 स्टेप्स से गुजर के आई है, तो दैट इज व्हाई हम उन्हें कह सकते हैं ये ऑथेंटिक
है। असल बात ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ना By the period of time चेंज हो रही है। ठीक है, गैलीलियो के ज़माने में या इवन न्यूटन के ज़माने में यूनिवर्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट थे वो आइंस्टाइन के ज़माने में आके बिल्कुल शेक हो गए, नए कॉन्सेप्ट आ गए। ठीक है, इवन के दरमियान में सदियाँ गुजर गईं। अब वो जो 3 सदियों में लोग बिलीव रखते थे ना कि यही रियलिटी है, लेकिन बाद वाली सदियों में आके प्रूव हुआ कि वो रियलिटी नहीं थी, रियलिटी ये। सेम इज़ हेयर कि 2-4 सदियों के बाद साइंस वहां पे पहुंच जाए कि ये जो दरमियान में आइंस्टाइन के बाद से ये जो मामला शुरू हुआ, ठीक है, तो ये हम गलत समझ रहे थे, ये रियलिटी नहीं थी। यानी एक पॉसिबिलिटी है, आप एक सफर तय कर रहे हैं, आपने मान लिया कि ये एक इल्मी सफर है, ठीक है, और उसमें गलती हो जाती है लेकिन आप बेहतरी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि गलती का इम्कान है, पॉसिबिलिटी है। वो जो कह रहे हैं कि खबर में गलती का इम्कान है, इसलिए उसको, वो जो मीन ऑफ नॉलेज है खबर का, उसको तो आप कहें कि वो सेकेंडरी है, और जो साइंस वाला है ये प्राइमरी है। हम ये बात कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, इस लॉजिक की बुनियाद पे कि खबर में गलती का इम्कान हो सकता है, बंदा झूठ बोल सकता है, खबर गलत भी हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, मान लिया। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि सेंसेस को भी गलती लग जाती है, जिस तरह खबर में झूठ का इम्कान है, सेंसेस को भी गलती लग जाती है, और उस गलती की बुनियाद पे सदियों तक आप एक बात मानते रहें और बाद में पता चले कि नहीं वो गलती थी, एक साइंटिफिक जो है वो एक बड़े साइंसदान की गलती थी। तो इसलिए गलती की वजह से आप किसी को सेकेंडरी या किसी को प्राइमरी नहीं बना सकते, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी दोनों में है. मीन्स ऑफ नॉलेज दोनों है, खबर भी है, फाइव सेंसेस भी हैं. ठीक है, गलती का इम्कान वहाँ पे भी है, गलती का इम्कान यहाँ पे भी है. इंसान इस वक्त जो रिलीजन को नहीं भी मान रहा, वहाँ से भी नॉलेज हासिल कर रहा है, खबर से भी, फाइव सेंसेस से भी हासिल कर रहा है. मजहब भी नहीं कह रहा कि आप फाइव सेंसेस से जो आपको मिल रहा है आप उसका इनकार की पोजीशन ले लो, मजहब भी नहीं कह रहा. ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी रह जाता है कि मीन्स ऑफ नॉलेज में प्राइमरी मीन कौन सा है. ये एक डिफरेंस हमारे और उनके दरमियान हो सकता है. ठीक है, दोनों दोनों को मान रहे हैं, अहले मजहब भी मान रहे हैं कि फाइव सेंसेस मीन ऑफ नॉलेज है. ठीक है, इससे नॉलेज मिलता है, एक टूल है. वो भी मान रहे हैं कि खबर, उनकी सारी सेकुलर साइंसेज हमने कहा हिस्ट्री सारी उसके ऊपर खड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मान रहे. सिर्फ ये बात आ जाती है कि प्राइमरी कौन सा है, इसमें इख्तलाफ हो सकता है. वो कहें कि जी साइंस प्राइमरी है, हम कहें कि जी नहीं, खबर जो है ना, ये जो मीन ऑफ नॉलेज है ये प्राइमरी है, इसमें इख्तलाफ हो. तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो नैरेटिव है जो इस रिलीजियस डिस्कोर्स में पैदा हो रहा है, इसमें यह है कि खबर जो है वो प्राइमरी सोर्स है. उसकी उसको हम समझने की अब कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छा अब आपके पास इसकी क्या लॉजिक है कि ये प्राइमरी सोर्स क्यों है, फाइव सेंसेस वाला प्राइमरी सोर्स क्यों नहीं है. ठीक है, हम उसको भी सोर्स मान रहे हैं लेकिन हम कह रहे हैं कि वो सेकेंडरी सोर्स है. कितना टाइम हो गया, काफी है मेरा, 8 बज गए. तो चलें इसी बात को हम फिर आगे चलेंगे, लेके चलेंगे इंशाल्लाह से, नेक्स्ट टाइम हम इसको खोलेंगे. जी देखिए, असल में मैं फिर वही आपको कह रहा हूँ, वो बेसिकली गलत ग्राउंड पे खेलता है मौलिद. ठीक है, उसे कहो भाई पहला सवाल ये नहीं है कि रसूल सल्लम ने 12 शादियाँ की, ठीक है, या 11 शादियाँ की. पहला सवाल ये नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी कैसे चली. पहला सवाल ये है क्रिएटर है कि नहीं है. अब लॉजिकल बनो, मतलब ये तो बाद के सवाल है ना, ये बाद के सवाल है. ठीक है, पहले आप ये बताओ क्रिएटर है कि नहीं है. अगर आप कहते हो भाई क्रिएटर नहीं है, ठीक है, आप ये कहते हो कि क्रिएटर नहीं है, फिर ये सवाल ही बेमाना है. फिर ये सवाल क्या है, मीनिंगलेस है. जब क्रिएटर नहीं है तो फिर जैसे मर्जी नस्ल इंसानी चली, आपको क्या मसला. तो उसका है ना, इसको आप यूं मिसाल से समझे. मुफ्ती महमूद साहब थे एक बड़े आलमी दीन, असेंबली में भी रहे. किसी खातून ने उनसे कहा कुरान 4 शादियों की इजाजत देता है, तो हम नहीं मानती 4 शादियां, ये जुल्म है औरत के साथ. एक और अभी मेरे जहन में नहीं बात आ रही कि क्या बात थी. कोई खैर इसी तरह की बात थी. तो उन्होंने जवाब में उसको कहा कि भाई बात यह है कि कुरान ने ये जो कहा है ना कि मर्द 4 शादियां कर सकता है, या कुरान ने ये जो कहा है कि मर्द जो है वो कवाम है, या कुरान ने ये जो कहा है कि औरत को जो है वो पर्दा करना चाहिए, हिजाब करना चाहिए, या कुरान ने ये कहा है कि औरत को निकाह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ये कुरान के जितने अहकामात हैं ये उन औरतों के लिए हैं जो बिलीवर्स हैं, यानी जिसने मान लिया कि मेरा कोई क्रिएटर है. जिसने माना ही नहीं है तो भाई वाह भले वो 400 करे या 500 मर्द करे, आप बात समझ रहे हैं. ठीक, मसला उसका है कि जो मानती है कि मेरा कोई क्रिएटर है, जो मानती है कि उसने सिग्नल भेजा है, जो ये मान गई है कि वो आखिरी दफ़ा रसूल सल्लम को सिग्नल रिसीव हुआ और ये मैसेज आया है कुरान की सूरत में, मसला उसका है कि जो ये मान गई है कि भाई आप ये क्यों नहीं मान रही. जिसने क्रिएटर ही नहीं माना, हमें उससे क्या गरज कि वो 400 करे या 500 करे. हम उसको क्या ये बताएंगे कि भाई बीबी तुमने जो है वो 400 500 मर्द नहीं करने. हम उसको क्या कहेंगे जो क्रिएटर को नहीं मान रही, हम उसे यही कहेंगे कि 400-500 मर्द ना करो, हम उसे क्या कहेंगे, क्रिएटर को मानो। वही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि असल में उसको कहो कि बेसिक क्वेश्चन की तरफ आओ, प्राइमरी क्वेश्चन की तरफ आओ, वहां जाके जो है ना उसमें ना जाओ। क्रिएटर है कि नहीं है पहले ये बताओ। अगर तुम कहते हो क्रिएटर नहीं है, कोई खालिक नहीं है, तो तुम्हें इससे क्या गर्ज कि इंसेस्ट है कि नहीं है, क्योंकि वो इंसेस्ट किसने मना किया, वो खालिक ने मना किया है ना, तो खालिक तो है कोई नहीं, तो फिर क्यों क्यों कह रहे हो आप ये सवाल हमसे उस वक्त कर सकते हो। देखो वो यही कहेगा ना कि आपका ये अकीदा है कि खालिक है, आप उसे यही कह सकते हैं भाई तुम्हारा क्या अकीदा है, तुम कहते हो नहीं है, तो फिर तुम्हारा सवाल ही बेमाना है, पहले इस अकीदे पे आओ कि खालिक है। जब वो मान लेगा कि खालिक है, अब उसको समझाना आसान है कि भाई खालिक ने रोका है, अब बताओ भाई रिपोर्ट को मैंने बनाया ना, तो इंस्ट्रक्शन कौन देगा, रिपोर्ट रिपोर्ट अपने आप को देगा कि मैं दूंगा, वो प्रोग्राम किसने फीड करना है रिपोर्ट के अंदर, वो विंडो को किसने कहना है कि भाई इस तरह से आप बिहेव करो, मैं नहीं करना है ना। अब विंडो ये कहे भाई तू कौन होता है, प्रोग्राम जो है प्रोग्रामर को कहे, जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ी उसको बात समझे, प्रोग्राम जो है प्रोग्रामर को कहे कि तू कौन होता है मुझे ये बताने वाला, ये लैंग्वेज सिखाने वाला, वो कहेगा मैं तेरा क्रिएटर होता हूं, मैं तेरा बाप होता हूं। ठीक है,
डॉक्टर सर मुझे अपनी वीडियो में बताया था कि इंसेस्ट रहा है, बस चाहने के बाद मना कर दिया।
देखिए असल बात फिर वही है कि असल चीज खालिक का हुक्म है, इंसेस्ट असल नहीं है, क्रिएटर है, क्रिएटर ने एक चीज जायज रख दी, जायज है, उसने एक चीज से मना कर दिया, वो मना है। असल बात ये है ना, उसने कुछ औरतों से निकाह को क्या किया, अब बहन से निकाह को क्या किया कि जायज नहीं है, लेकिन कजन भी क्या है, बहन ही है ना, वो आपकी कजन क्या है, खालाजाद, फूफीजाद, चचाजाद, तायाजाद, क्या है, बहन ही है ना, एक नस्ल में ऊपर जाके आप क्या है, एक ही है, लेकिन कहा कि जायज है, चल रहा है। एक वक्त में दो बहनों को नहीं जमा कर सकते, मना कर दिया, ठीक है, एक बहन को तलाक दे के दूसरी से निकाह कर लें, कोई अरज नहीं है। असल बात खालिक का हुक्म है, आप देखें कैसे घूम रहा है, फूफी भतीजी को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते, या फूफी से करें या भतीजी से करें, असल चीज क्या है, खालिक का हुक्म है, इससे निकाह कर सकते हो, इससे नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, खालिक का हुक्म है भाई, हम प्रोग्राम है, हमारा कोई प्रोग्रामर है, ये ग्रैंड डिजाइन है, उसकी बहुत अच्छी इस्तेलाह मुझे लगी है स्टीफन हॉकिंग की, उसकी किताब का जो टाइटल द ग्रैंड डिजाइन, ये खुदा का बहुत बड़ा डिजाइन है, लेकिन ये डिजाइन एक द ग्रैंड प्लान के ऊपर खड़ा है। ओ भाई ये प्रोग्राम पहले प्लानिंग करेंगे ना, फिर ही प्रोग्राम बनेगा ना, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग हमारी हुई हुई है, प्रोग्रामिंग बगैर इंस्ट्रक्शन के कैसे हो सकती है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा तो प्रोग्राम चलेगा ना, ऐसे तो चलेगा ही नहीं, तो यही बात है कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो यही शरीयत है, किताब है, ठीक है, चलें बहरहाल आज इतना काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सुभान अल्लाह व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।
जिंदगी शऊर से अल हिकमा इंटरनेशनल।